तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं तपितांजेन भूतले वयं रूपकदमयं ददाति स्वापदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने चर्चा किया है मंत्र 17 तक, जिसमें प्रार्थना की है भगवान को भक्तों ने। 17 श्लोक में भी प्रार्थना थी। Is my voice is clearly audible?
Yes, Prabhuji.
Yes.
Yes, Prabhuji.
तो भगवान से ये विनती प्रार्थना हो रही है कि हे प्रभु, आप कृपा करके अपना दर्शन दीजिए, अपने चेहरे पर माया का जो प्रभाव है, ये ब्रह्म ज्योति का जो आवरण है, उसको हटाइए और आपके भक्तों को कृपा करके दर्शन देकर के उनका उद्धार कीजिए। और हमने हमारे पास्ट में अगर आपका थोड़ा भी सेवा किया हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चरणों में कोई सेवा अर्पण किया है, तो कृपा करके उसको स्मरण करके मेरी अपवित्रता को, मेरे मेरे पतित अवस्था को क्षमा कर देना और उसको उसके आधार पर मुझे आपके चरण में स्थान देना। तो जनरली ये भगवान के भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि उनके चरणों के शरण से दूर ना होने के लिए निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि जानते हैं हम, अगर हम भगवान की शरणागत नहीं है, अगर हम भगवान से जुड़े हुए नहीं है, तो इसका परिणाम यह आता है कि हम इस संसार में अलग अलग प्रकार की समस्याओं से हमेशा घिरे रहेंगे। तो असीमित कष्टों का सामना करना पड़ेगा और साथ साथ में हमारा मन जो है उसमें कभी किसी प्रकार का संतोष प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए भगवान की शरणागत रहना और उनसे निरंतर कृपा की याचना करना और निष्कपट भाव से पूर्ण रूप से विनम्रता का पालन करके भगवान की कृपा का प्रतीक्षा करना, उनके लिए उनसे विनती करना, ये इस तरह से भक्त धीरे 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 भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते। तो कनेक्शन 17 और 18 के बीच में ऐसा है कि भक्त ऐसा 17 में जैसे हमने बताया कि वो चाहते हैं कि भगवान की सेवा को ध्यान में लेकर के उनको इस जन्म के चक्र से उद्धार करे। अभी 18वें में वो भक्त जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं क्या कि इस संसार में जब तक उनको रहना है, तब तक एक भगवान उनको गाइडेंस दे, विशेष तरह से मार्गदर्शन दे कि उनको सही मार्ग क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमें हमारा कौन सा मार्ग सही होना चाहिए। और साथ साथ में प्रार्थना करते हैं कि जितने भी पाप कर्म के फल इकट्ठे हुए हमारे जीवन में, उन सब से हमें मुक्ति प्रदान किया जाए। ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुक्ति दीजिए। और किसी भी प्रकार का जो रुकावट उनके भक्ति में ना आए, इस तरह से सुरक्षा प्रदान कीजिए। दिस इज द मोड ऑफ प्रेइंग। इस श्लोक मंत्र में जो मुख्य थीम है वह यह है कि भक्त भगवान जो है वो बद्ध जीवात्मा, हमारे जैसे बद्ध भक्त जीवात्मा जो होते हैं, उनके पाप कर्मों से उनको शुद्ध करते हैं, जिसका परिणाम यह आता है तो आध्यात्मिक साक्षात्कार में आगे बढ़ पाए। भगवान उनको ऐसा गाइडेंस भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं, जो लोग सही में भगवान को समझना चाहते हैं। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस श्लोका। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ट्रांसलेशन पढ़िए।
हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरणों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में सब कुछ जानते हैं, मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए।
Yes, this is very beautiful sloka. इसमें conclusion के रूप में भगवान को ये प्रार्थना की जाती है कि अनेक अनेक जन्मों के पश्चात हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का और यह भक्ति से जुड़ने का। हम अगर कृष्ण भक्ति में आज नहीं जुड़े होते तो आप सोचे कहाँ होते आज हम, कहाँ भौतिक संसार में एक जगह से दूसरी जगह, जैसे माया हमें वॉलीबॉल की तरह, फुटबॉल की तरह इधर से उधर फेंकती, तो हमारा इतना बुरा हाल होता संसार में। लेकिन अगर आज भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों के कृपा से आज हम कृष्ण भक्ति में स्थिर हो पाए हैं, जुड़ पाए हैं, और ये जो सौभाग्य है वो बहुत ही दुर्लभ होता है। भगवान को यहाँ पर परम पवित्र कहा गया है, इज द मोस्ट प्यूरिफाइड। तो यहाँ पर अगर तात्पर्य में अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे, एक तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम पतित नहीं होना चाहते, और साथ साथ में हमारे लिए सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है इसका गाइडेंस हम चाहते हैं। तो इस इन विषयों की चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें मनुष्य शरीर की आवश्यकता होती है। ये मनुष्य शरीर हमने प्राप्त किया है और साथ साथ में हमें ब्राह्मणिकल कल्चर भी चाहिए। ब्राह्मणिकल कल्चर का अर्थ होता है कि अधिक से अधिक समय हमें सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए, रजोगुण तमोगुण से पर। पहला है कि हमें मनुष्य होना चाहिए, अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और हमारा कार्य सतोगुण में स्थिर होने का प्रयास करना चाहिए। फिर विधि क्या है, विधि है भगवान को शरणागत होना चाहिए और उनकी निष्कारण कृपा के लिए बार बार उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं तो माला का जप करते हैं और साथ साथ में प्रार्थना भी करते हैं, हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, कृपा करके आप हमें आपकी सेवा में लगाइए, अधिक से अधिक सेवा दीजिए, अगर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो आप मुझे अधिक से अधिक सेवा करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे ये प्रार्थना कि हमारे पाप खत्म कर दीजिए, तो ये तो ये ऐसे तो मतलब ऐसे भक्तों को तो नहीं पूछना चाहिए ना, क्योंकि भगवान तो कहते हैं भगवद गीता में कि हम तो हम सर्व पापेभ्य हो, तो फिर मतलब ये तो भक्ति का, ये शुद्ध भक्ति का तो लक्षण नहीं है कि ऐसे हम बोलें कि हमारे पाप खत्म कर दीजिए। वो तो वो भगवान तो मतलब एक तरीके से मतलब मुझे ये लग रहा है कि इसका मतलब हमें भगवान पर विश्वास नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली कर देंगे, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं आप कर दी, वो कहेंगे वो तो मैं करूंगा ही, तुम्हें बोलने की क्या है जरूरत।
हाँ तो फिर भक्त बोल भी सकता है ना, लेकिन आपको बोले तो प्रॉब्लम क्या है, भगवान को भक्त बोल सकता है ना।
अच्छा एक और चीज, मतलब जैसे वो था कि एवं परंपरा प्राप्त मतलब वाला, तो भगवत गीता पहले आई या ईशोपनिषद पहले आई, मतलब अगर जैसे ईशोपनिषद पहले हुई फिर ये वाला श्लोक तो भगवान ने अर्जुन को बोला था, हालांकि ज्ञान तो पहले से था बट स्टिल, तो फिर ये बोल सकते हैं कि अच्छा हमें तो पता नहीं था ये ऑब्वियसली बोल दिया।
वेल भगवान केवल भगवत गीता में नहीं बोले, ऐसे और भी कई स्थानों पे भगवान कहते हैं मेरी शरणागत होएंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे अपना उद्धार करूंगा, ऐसे बहुत जगह पर कहा है भगवान ने। लेकिन जैसे एक बार वृंदावन में जब भी कभी असुर आते थे वृंदावन में, तो ब्रजवासी भक्त को पता था कि कृष्ण ही उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनका कोई और चारा नहीं है, उनके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को जाकर के कहते थे आप हमारी रक्षा कीजिए, हम हमारी रक्षा कीजिए। तो कृष्ण को तो पता ही था कि रक्षा मेरे सिवा तुम्हारा कोई करने वाला नहीं है, मुझे ही रक्षा करनी है आपकी, लेकिन फिर भी भक्तों का ये स्वभाव है कि वो उस व्यक्ति जिस व्यक्ति को वो प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से कृपा की याचना करते हैं, उनसे अनुग्रह प्राप्त करने का विनती करते हैं। यद्यपि भगवान सर्वज्ञाता है, वो अंतर्यामी है, उनको तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं, फिर भी भक्त जब प्रेम से भगवान को कुछ कहता है तो भगवान को अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बच्चा, उसको आपको तो पता है कि भाई उसका खाना पीना सुरक्षा वगैरह सब कुछ आपको ही ध्यान रखना है, फिर भी आकर के कहता है मुझे डर लग रहा है या मुझे आप रक्षा कीजिए। जैसे छोटा बच्चा होता है माँ की गोद में चला जाता है, कैसे भय लगता है, तो ये भक्तों का भगवान के साथ विनिमय है। इसलिए अगर कोई भक्त स्तुति करके, जैसे गजेंद्र ने भगवान को विनती किया कि आप मेरे दुख कष्ट दूर कीजिए, तो कोई कह सकता है कि भाई भक्ति भक्त है तो क्या हो गया, भगवान तो सब जानते ही है, और शुद्ध भक्ति में तो आप कुछ मांगते ही नहीं हो। लेकिन ऐसी शुद्ध अवस्था ब्रजवासी भक्तों में पाई जाती है, हर एक भक्त में ऐसी शुद्ध अवस्था पाई नहीं जाती जिसमें वो अपना थोड़ा भी सोचते नहीं है। जैसे लक्ष्मी देवी और सबको जब पूछा गया कि क्या तुम भगवान को अपने चरण की धूल रज दोगे, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको उनको ये नहीं, इतनी उच्च प्रकार की भक्ति तो केवल वृंदावन वासियों में ही होती है, वो शुद्ध भक्ति का पालन करे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गजराज की भक्ति, लक्ष्मी की भक्ति, दे आर ऑल डिवोटीज ओनली, बट शुद्ध भक्ति में भी जो टॉप मोस्ट होते हैं वो ब्रज भक्ति है। हमें ये पता है क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि सबसे उत्तम भक्ति वृंदावन की भक्ति है। लेकिन बाकी सारी भक्ति जो है उसमें भी भगवान ये स्वीकार करते हैं अपने भक्तों के द्वारा, जो भी स्तुति जैसे द्रौपदी कहती है कि ये दशासन मेरा वस्त्र हरण कर रहा है आप मेरी रक्षा कीजिए, तो कोई सोच सकता है ना, द्रौपदी सोच सकती है, तो रक्षा करना तो करना नहीं करना कृष्ण का काम है, फिर भी कृष्ण लाइक्स दिस, यू जस्ट प्रूव दिस, इसको एग्जांपल के रूप में प्रूव करने के लिए जस्ट से लास्ट थिंग, कि वृंदावन में तो असुर लोग आते हैं, असली असुर आता है, और इसलिए भक्त लोग भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में तो असुर आते ही नहीं, होते ही नहीं, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर क्या करते हैं भगवान असुर आने का समाचार फैलाते हैं, तो क्या होता है भक्तों को गोलोक वृंदावन में भी अघासुर आया है, वहां पर भी रेणुकासुर आया है, and then they feel the same love. So like this. Krishna likes this. Devotees come, Bhagavan Bhakta aate hai unke paas, haath jod ke vinti karte hai, aur Bhagavan ko apna parivar ka sadasya maante hai, ya Bhagavan ko, Bhagavan ke saath connect karte hai apne aap ko, is tarah se. So Krishna appreciate that. That answers?
Yes, Prabhu, thank you. In fact, वो जो बच्चे वाला example आपने दिया वो बहुत relating और connecting था. Thank you.
Okay. So, भक्त जो है वो इस तरह से progress करता है प्रार्थना करके. और भक्ति में रुकावट भी आ सकती है. भक्ति में रुकावट क्या आती है? वेदों के जो नीति नियम है उससे हम चलित हो जाए, या फिर कभी कभी इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित हो सकते हैं हम, या फिर कभी कभी फिलोसॉफिकल डिविएशन आ सकते हैं. फिलोसॉफिकल डिविएशन क्या होता है कि उस बहुत कम लोग इसको पकड़ पाते. जैसे समझ लो कि आपका स्टीयरिंग व्हील 1 mm या 1 inch इस लेफ्ट या राइट टर्न किया हुआ है, तो शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं पड़ता. सबको लगता है कि हाँ हम तो सही जा रहे हैं, लेकिन जब आगे जाकर के देखने को पता पड़ता है कि वो अपने मार्ग से भटक जाए, तो क्या होगा? उनका फिर दूसरा दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा फिर वापस उनको सब अपने काम अपने रास्ते पे वापस आना पड़ेगा. तो ये द डिविएशन फ्रॉम द वेदास, शास्त्र के डिविएशन. एंड विकर्मा, विकर्मा का अर्थ होता है शास्त्र से अगेंस्ट में कर्मा. और मोर स्पेसिफिकली डिवोशनल लाइफ में अनर्थास. तो इन दिस वे हमारे मार्ग में रुकावट आ सकती है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं. इसमें हमारा आध्यात्मिक जीवन से पतन ना हो, इसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ता है. तो जब कब कब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जब हमारे जन्म का अभिमान हो सकता है, या हम किसी प्रकार की योग्यता को ग्रहण करने बिना. जैसे कुछ वक्त होते हैं तो हम सब जानते हैं, हमें कुछ मत सिखाओ, हमें सब पता है, हम शास्त्र वगैरह सब हमें पता है, इतने सालों से हम सुन रहे थे, हमें इतने भागवत क्लास सुने, इतने भगवद्गीता क्लास सुने, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़े, हम सब जानते हैं, हमें मत सिखाओ. तो यहाँ से फिर वो हो सकता है कि वो पतन की ओर आगे बढ़ सकता है. लेकिन उसका क्या उपाय है? क्या उसको फॉल डाउन हो सकते, उससे बचाना चाहिए? बचा सकते हैं. कैसे? भगवान कहते हैं उसको योग भ्रष्ट हो भी जाए थे. जो योग भ्रष्ट होते हैं उनको दो जगह से जन्म ले सकते हैं, जन्मा के घर पे या तो पवित्र परिवार में. तो इस तरह से जन्म लिया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति इस तरह से गिरा हुआ है किसी आध्यात्मिक जीवन से, तो उसको उद्धार करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? उसके उपाय है भगवान को शरणागत होना चाहिए, भगवान के डायरेक्शन के अंतर्गत काम करना पड़ेगा. भगवान जैसे जैसे शास्त्र आदेश दिए, गुरु के माध्यम से जो कुछ भी कहते उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना, उसके अंदर काम करना, गुरु और वैष्णव की शरण ग्रहण करना और शास्त्र के नियमों का पालन करना. अगर इस तरह से कोई भक्त इस तरह से अपने आप को बचाना चाहता है कृष्ण भक्ति में, तो वो इन सब सहायता से अपने आप को बचा सकता है. तो भक्ति का जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है. This is the best way for services. और इससे उत्तम कोई उपाय है ही नहीं भक्ति के. अगर आप चाहो ज्ञान कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भान अमृत मान्य जेबा खाए. ज्ञान कांड कर्मकांड केवल विषय भान. जो ज्ञान कांड और कर्मकांड है वो केवल विष का मटका है. विषय भान भांड का अर्थ होता है मटका, घड़ा. तो केवल विषय भान विष का घड़ा है वो. अमृत मान जेबा खाए, वो जिसको उसको अमृत मान कर कोई खाता है, नाना योनि सदा फिरे, बहुत सारी योनियों में उसको घूमना पड़ता है, करदे भक्षण करे और बहुत सारा निम्न कोटि का काम होता है, तात जन्म अध पाते जाए, ऐसा व्यक्ति अधपतन प्राप्त करता है। तो सभी मार्ग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं इसी विषय में, क्योंकि अनेक अनेक विधियों का पालन करने पश्चात कोई व्यक्ति भक्ति योग में आता है, लेकिन भक्ति योग में तो पहले ही दिन से सीधा शरणागत होकर होने की विधि बताई है, पहले ही दिन से सरेंडर टू कृष्ण। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति को स्पर्श करता है शुद्ध हो जाता है, शुचि हो या मुचि यदि कृष्ण भजे, मुचि हो या सुचि यदि कृष्ण भजे। सुना होगा आपने ये, राइट? सुचि हो या मुचि यदि कृष्ण त्यजे, अगर कोई ब्राह्मण है कृष्ण का त्याग करता है तो वो गिर जाता है, मुचि बन जाता है। मुचि का अर्थ होता है निम्न योनि वाला या चंडाल, ऐसा बन जाता है। और मुचि हो या सुचि यदि कृष्ण भजे, और जो मुचि होता है जो निम्न जाति वाला है कैसा भी है, वो व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति को स्वीकार करके ब्राह्मण से भी उत्तम बन जाता है, शुचि। सो इम्पोर्टेंट इज यही भजे से ही चतुर, जो भजन करता है कृष्ण का वही चतुर है, वही वास्तव में चतुर है, बाकी तो सब माया से प्रभावित है। तो चतुर वही होता है कि जो कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण की शरणागत होता है। सरेंडर राइट इन द बिगिनिंग, शरणागति पहले ही जुड़ जाता है कृष्ण भक्ति में, बाकी ज्ञान मार्ग कर्म कांड ये सब उसको लंबा लंबा प्रोसेस है, कोई प्रिलिमिनरी स्टेजेस का उसको पालन नहीं करना पड़ता भक्ति मार्ग में। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही शरणागत होते हैं सीधा भगवान ही चार्ज ले लेते हैं आपका, कृष्ण स्वयं चार्ज ले लेते हैं, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो, शरणागत होने से सारे पाप भगवान ले लेते हैं। आप कहेंगे फिर अच्छा सारे पाप ले तो हम तो ऐसे के वैसे ही अभी भी। इसकी चर्चा हमने पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं कि भगवान किस तरह से पाप लेते हैं, एंड देन भगवान के द्वारा भक्त को क्वालिफिकेशन प्राप्त किया जाता है। क्या भगवान देते हैं उसको शुद्ध बनाने का पूरा मार्गदर्शन, तुम ये कार्य करोगे ये कार्य करोगे गुरु के आदेश के माध्यम से। शिष्य जैसे गुरु के आदेश को सावधानी से समझता है और उसका पालन करता है तो वह आदेश डायरेक्टली कहाँ से आता है, भगवान से ही आता है। और उसको जितना अधिक वो अनुसरण करेगा, जितना अधिक वो उसका पालन करेगा उतना वो क्वालिफाई होता जाएगा अधिक कृपा प्राप्त करने का। कई बार कहते हैं मैं कृपा दीजिए कृपा कीजिए कृपा कीजिए, कृपा तो दे सकते हैं लेकिन तुम्हें कृपा का उपयोग ही नहीं करना है तो क्या करेंगे, तुम चाहते ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। उसी गुरु ऐसा कहेंगे कि यू डोंट वांट टू प्रोग्रेस, यू वांट टू स्टे इनटू द सेम इग्नोरेंस, तुम्हें वही माया पसंद है, तुम्हें वही इंद्रिय भोग पसंद है, तुम्हें वही तुम्हारी जो पुरानी लाइफस्टाइल थी वही तुम्हें पसंद है। तो भगवान गुरु कहेंगे कि मैं तो देखो आज भी तुम्हारे सामने खजाना खुला करके बैठा हूं, तुम जितना मुझसे कृपा मांगना चाहते हो जितना चाहते हो तुम सब मैं देने को तैयार हूं, बट यू डोंट वॉन्ट टू यूज इट, तुम्हें इसका उपयोग फायदा नहीं उठाना है, तुम्हें इसका लाभ नहीं लेना है, तुम्हें इसका कार्य इसको स्वीकार नहीं करना है, वॉट कैन आई डू राधर आई कैन गिव यू सम रेमेडीज सम मेडिसिन कि जिस अवस्था में तुम हो उससे तुम थोड़ा ऊपर आ सकते हो, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो दिस इज इफ वी डू दिस देन वी आर गेटिंग क्वालिफिकेशन। जैसे हमने सुना था राग भक्ति भाव भक्ति फिर प्रेम भक्ति ये सब, अभी हमें लगता है कि वो ये तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए, बट इट इज पॉसिबल अगर कोई भक्त गंभीरता से इस चीज को स्वीकार करता है। और जो त्यागना पड़ता है वो त्यागना चाहिए, क्योंकि समय तो हमारे पास है ही नहीं, कब कब जाकर के हमारी मृत्यु आ जाएगी हमें पता नहीं है, फिर पता नहीं हमें भक्तों की संगति मिलेगी नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि इसी जीवन में भक्ति को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त बनने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। क्योंकि आज ये इंद्र भोग, परिवार का पालन पोषण, ये सब तो आज है कल नहीं है, और ये तो अनेक अनेक जन्मों से चलता ही आ रहा है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए क्वालिफिकेशन प्राप्त हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट वी वांट इट, एंड देन अगर कोई इस तरह से आगे बढ़ता है तो कितना भी बड़ा अधम पापी कोई व्यक्ति हो उसका भी उद्धार हो जाता है। बलराम नित्यानंद प्रभु, अभी उनका बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु आपका किसी भी अवस्था से उद्धार कर सकते हैं, किसी भी अवस्था से। तो देयर इज नथिंग टू वरी फॉर एनी सिंफुल पर्सन। श्रीमद भागवतम क्या कहता है, हृदय तस्थो अभद्राणी विदुनोती सुनता स्वकथा कृष्ण, भगवान की कथा आप हमारे हृदय को पूरा एकदम साफ कर देती है, हृदय से निरंतर सुनना चाहिए, लेकिन श्रवणा सुनता स्वकथा कृष्ण निरंतर सुनना चाहिए, कोई हमें प्रयास करना चाहिए। कई बार हम क्या कहते हैं कोई सुनाने वाला ही नहीं है तो क्या करें, अरे भाई सुनाने वाले तैयार बैठे, आप जाओ भक्तों के पास, आप हमें बताइए कृष्ण के विषय में, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, हमारे हृदय में जो भी कचरा है सब हटा देंगे। दिस इज वंडरफुल श्लोक फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, सुना है आपने, तदा रजस्तमो भाव काम लोभा वैश्चे चेत एते नाविद्यम सतम सत्ये प्रसिद्धम् एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग भगवत तत्व ज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। क्या होगा इसका परिणाम, तदा रजस्तमो भाव, हमारा रजोगुण और तमोगुण जो काम लोभ आदि उसका उदय जो करता है उसको नष्ट किया जाता है इसके माध्यम से। चेत एत अनाविद्धम स्थितम, कहां और किसमें स्थिर होता है, सत्वे स्थितम सत्वे प्रसीदति, उस तत्व में स्थिर होता जाता है धीरे धीरे धीरे। और ऐसा व्यक्ति जब पूर्ण रूप से सत्व में स्थिर हो जाता है एवं प्रसन्न मनसो, वो भक्तफुल्ल प्रसन्न हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रसन्न, और क्या करता है भगवत भक्ति योग, भगवान भक्ति, भगवान की भक्ति के माध्यम से ये शुद्ध प्रसन्न हो जाता है और जुड़ा रहता है भगवान की सेवा। फिर क्या होगा, भगवत तत्व विज्ञान, भगवान का जितना भी नॉलेज है विज्ञान है वो अपने आप प्रकट हो जाता है उसको, एंड मुक्त संग से जाए थे। फिर ऐसा भक्त आगे जाकर के शुद्ध भक्त बन जाता है, शुद्ध शुद्ध का अर्थ होता है जिसके हृदय में कोई बौद्धिक इच्छा नहीं है, अन्य अभिलाषता शून्य, ऐसा शुद्ध भक्त बन जाता है, मुक्त संग से उत्तम भक्ति करने वाला भक्त। और फिर ऐसा भक्त धीरे 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 रज भक्ति तक पहुंच सकता है शुद्धता के माध्यम से, और फिर उसको भगवान कृष्ण का नाम रूप लीला, जैसा हमने पिछली बार बताया था नाम रूप लीला ये सब दिखना प्राप्त होता है उसको, भगवान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे भगवान के साथ वो कबड्डी खेल सकता है, ये सब उस समय जब वो शुद्ध भक्त की अवस्था तक पहुंच जाता है, उस समय फिर ये सब प्रकार की लीलाओं में उसको प्रवेश प्राप्त हो सकता है। लीला इज द लास्ट, उसके पहले उसको सब नाम भगवान से अभिन्न है ये सब साक्षात्कार उसको होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है, फिर वो मुक्त संघर्ष जाए रहे, देन अल्टीमेटली ही रीएस्टैब्लिश इन हिज एक्चुअल पोजीशन, वो अपने एक्चुअल पोजीशन में रीएस्टैब्लिशमेंट प्राप्त करता है, रिवाइविंग ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमारे हृदय की जो कृष्ण भावना होती है उसको शुद्ध कर सकता है, उजागर कर सकता है। सो एनी क्वेश्चन इन दिस, नो क्वेश्चन, ठीक है। तो एक लाइन पढ़ते लास्ट में, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो दस वी एंड ईशोपनिषद टुडे, एंड दिस इज सच एक्चुअली रियली वंडरफुल बुक, और वास्तव में हमें भगवान के करीब लाते हैं। ओके
हरीश प्रभु जी,
यस प्रभु जी, आप बात कीजिए पहले।
ओके थैंक यू माता जी. जैसे कि ईश्वर उपनिषद में सिर्फ 18 श्लोक ही है या फिर श्रील प्रभुपाद जी ने?
नो नो दिस इज कंप्लीट वर्जन. This is complete.
Oh, okay. Because मुझे लगा कि जैसे हमारे ब्रह्म संहिता में बहुत सारे चैप्टर्स है पर चतुर महापुर ने सिर्फ 5 चैप्टर दिया था इसलिए मिला था उनको.
This is full version.
Okay, thank you.
हरे कृष्ण प्रभु जी. ये लास्ट पैराग्राफ में ऐसा सेंटेंस है, जो जो सारे संशय घट जाते हैं क्यों क्यों वह शुद्ध भक्त बन जाता है. तो ये संशय मीन्स डाउट की बात है कि किस चीज के लिए कहा गया है?
Well, भक्ति की प्रगति का जो आधार होता है वो फेथ होता है, श्रद्धा. श्रद्धा शब्द विश्वास निश्चय विश्वास पालन. तो शरणागति का जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वह है विश्वास श्रद्धा. भगवदगीता चैतन्य उत्तम मध्यम कनिष्ठ मध्यम उत्तम के विषय में जब पढ़ा था तो क्या था, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसरी. भक्त जो होता है उसकी श्रद्धा जैसे जैसे स्ट्रांग होती जाती है उसी तरह से वो कनिष्ठ में से मध्यम, मध्यम में से उत्तम होता जाता है. तो श्रद्धा का अर्थ क्या होता है कि सब प्रकार की संशय नष्ट हो जाते हैं. कई बार क्या होता है कि हम भगवान के विग्रह को भगवान नहीं मानते फॉर एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन उत्तम भक्त होता है वो विग्रह को देख ही नहीं पाता. उसको भगवान, हमें विग्रह को भगवान मानने में प्रॉब्लम होती है और उनको भगवान को विग्रह मानने में प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे हमें भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, स्वरूप के प्रति, उनके संदेश के प्रति हमारी श्रद्धा तीव्र होती जाती है. एंड द मोर एस्टैब्लिश्ड यू आर द मोर एडवांस यू आर.
एक क्वेश्चन है प्रभु, जैसे यहाँ पे लास्ट श्लोक में बताया प्रपोर्ट्स में और श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के सेकंड फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 17-20 का वर्णन किया यहाँ पे. सो बेसिकली हियरिंग इज द प्रोसेस. तो हमें कैसे हियरिंग, हाउ यू टू हियर सो दैट वी अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली और कोई फिल्टर्स ना हो. जब मैं सुनता हूँ तब तो कोई फिल्टर्स रहते हैं सुनने में, पर जिसमें क्या कि मैसेज जो है वो मे बी 10% या 5% ही आता है. तो कैसे वो फिल्टर्स को हटाया जाए?
ऐसे तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कई जगह कहा है, जस्ट सिंपली लिसन और कुछ मत करो, स्टिल इट विल इफेक्ट यू. बट अगर अधिक अच्छी तरह से करना चाहे, जैसे हमने पहले एक बार बताया था कि जब आप कथा सुन रहे हो या कोई भी पॉइंट डिस्कशन हो रही है आप सुन रहे हो भगवान के विषय में, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये प्रत्यक्ष रूप से मुझे ही इंगित करके भगवान के द्वारा ये संदेश मुझे प्राप्त हो रहा है. ये किसी और के लिए नहीं है. कई बार हम सोचते रहते हैं हमेशा हम मटेरियल वर्ल्ड में गिरे हुए हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कोई भी संदेश आता है तो हम सीधा हर एक चीज को जजमेंट करना शुरू कर देते, ये ऐसा है वो ऐसा है ये ऐसा है वो ऐसा है इसके कारण ये सारा उपदेश तो उसके लिए है मेरे लिए नहीं है. लेकिन संसार में अगणित इन अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज अनंत जीवात्माएं है, इसलिए ये जो संदेश आपको प्राप्त हो रहा है वो जब आप सुन रहे हो इसका अर्थ है वो आपके लिए है. वो आप हमारे अपने भगवान के साथ जो संबंध है उसको उजागर करने के लिए. सो वी शुड कनेक्ट इट विथ अवर ओन सेल्फ. और जब आप अपने आप से इसको जोड़ते हो, आपके अनुभव के साथ इसको समझने का प्रयास करते हो परंपरा के माध्यम से, तो फिर आपको एक ही संदेश आपको जितनी बार सुनाया जाता है उतनी बार आपको नए नए इसके रंग, नया नया उसका अंडरस्टैंडिंग आपको प्राप्त होता जाता है. डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त अनफोल्ड शुरू होता है, स्टार्टेड अनफोल्डिंग. सो देन यू कैन बी मोर सिंसियर. सो वी शुड हियर विथ कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना चाहिए, हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन ना हो, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम संदेश को ध्यान से सुने, वो मेरे लिए है। और इसका केवल ये भी नहीं हो रहा है कि हम सुनेंगे तो केवल लोगों को बताने के लिए, ऐसे हमने पहले बताया था कि वी आर लिसनिंग दिस टू इम्प्रूव अवर कॉन्शियसनेस, नॉट दैट वी आर लिसनिंग सो दैट वी मेक नोट्स एंड टुमारो आई विल गो टू प्रीच एंड आई विल जस्ट यू नो ऑफलोड देयर। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रचार के लिए प्रिपरेशन करना अच्छी बात है, लेकिन श्रवणम करने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप केवल प्रचार करने के लिए इसको सुनते हैं। इसका उद्देश्य है इट शुड गो इनसाइड द हार्ट एंड कम आउट ऑफ द माउथ। ऐसा नहीं कि कान से डायरेक्ट पाइपलाइन सीधा मुंह तक की होगी तो हृदय तक जाएगा नहीं, तो मुंह से बाहर निकल जाएगा, तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। सो वी शुड हियर विद दिस मेंटालिटी एंड इट विल इफेक्ट ऑटोमेटिकली, इट विल इफेक्ट।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आस्किंग वन मोर क्वेश्चन। एक वन ऑफ द एसेस में ऐसे विवरण था, द क्वेश्चन वॉज क्वाइट फनी, क्योंकि उसमें ऐसा था कि ये सारी सृष्टि के सब कुछ है वो भगवान से रिलेटेड है। सो एक बिगिनर डिवोटी ये पूछता है कि क्या मैं किसी पड़ोस के वहां से फ्रूट तोड़ के भगवान को अर्पण कर सकता हूँ, इस प्रकार से, मतलब इन द सेंस चोरी करके भगवान को अर्पण कर सकता हूँ, ऐसा उसका प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न का क्या जवाब है, क्योंकि हालांकि सब कुछ भगवान का ही है तो ये उद्देश्य से वो पूछ रहा है।
एक बार ऐसा हुआ था पास्ट में, प्रभुपाद एक जगह देखे कि भगवान के विग्रहों पर फूलों की माला थी विदेश के किसी मंदिर में, तो प्रभुपाद ने देखा कि ये फूल तुम कहाँ से लेके आए, अपने यहाँ तो कोई फूल है तो होता ही नहीं है, बाजार से खरीदा है, फूल कहाँ से लेके आए। तो कुछ भक्त ने कहा कि प्रभुपाद हमारे घर के मंदिर के पास में दूर थोड़े आसपास में बहुत सारे घर है जिनमें फूल उगते हैं, फूल ग्रो करते हैं, तो हमने सब जगह से फूल तोड़ करके यहाँ से लेके आए। प्रभुपाद ने कहा कि क्या आपने उनको पूछा था फूल तोड़ने से पहले किसी के, बोले नहीं ये तो भगवान की संपत्ति है ना, ईशावास एकदम सब, तो इसलिए हम तो कहीं से भी तोड़ सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने मना किया, प्रभुपाद ने कहा कि संसार की सृष्टि सारी भगवान की है, ये तो ठीक है, लेकिन जब तक आप इस संसार में रहते हो यहाँ के नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए ईशावास का अर्थ ही नहीं कि हम किसी के भी जेब पे हाथ डाले पूरे सब भूमि गोपाल की। तो प्रभुपाद से दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसॉफी, everything belongs to God, but you should also follow the social conduct, whatever the rules and regulation is. So this ये इस तरह से ideal understanding होना चाहिए कि भगवान की संपत्ति है, but you have to be clear. Fanaticism वाला नहीं, fanatics नहीं, इसलिए अगर ऐसा ही कोई करेगा तो आगे जाकर तो वो माफिया भी बन सकता है, और सब कुछ भगवान का है, उठाओ सबका माल। दिस इज नॉट द वे कृष्ण वांट्स, क्लियर? यस,
हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसी संदर्भ में मैंने एक और जगह पे प्रभुपदा का लेक्चर था वो पढ़ा है उसके बारे में, उसमें एग्जांपल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ था कि जैसे रोड पे कंस्ट्रक्शन का सारा सामान रखा हुआ है रोड बनाने के लिए, अगर कोई व्यक्ति या भक्त ऐसा सोचे कि ये तो मेरे घर भी बनाने में काम आएगा और वो सारा उठा के चला जाता है तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो भगवान ने जो कुछ भी भगवान ने सभी को अपने कोटा के मुताबिक सब कुछ दिया हुआ है, तो अपने को उसी से संतुष्ट मानना चाहिए, और अगर जरूरत है तो किसी की परमिशन लेकर आप यूज कर सकते हो, नहीं कि उसे बिना पूछे कुछ लेकर, वो तो फिर चोरी हुई ऐसे।
यस, मोर क्वेश्चन।
हरे कृष्ण बाबू, तो प्रभु जी से कभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से घर के लिए भगवान को ऑफर करने के लिए जो तुलसी होती है वो ले आते, तो मैं वो भी नहीं जाना चाहिए?
पूछ लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर पूछ के किया होता है तो जो संरक्षक होते हैं उस जगह के उनको ध्यान में रहता है, नहीं तो क्या होता है उनको ऐसा लगे कि मेरी तुलसी रोज गायब हो रही है, कौन लेके जा रहा है, अननेसेसरी वो डिस्टर्ब हो जाए, इससे अच्छा है कि एक बार पूछ लेना अच्छा है, हो सकता है कि वो आपको अधिक मार्गदर्शन दे कि आप इस पौधे से मत लेना, उस पौधे से लो, या फिर मैं आपके लिए अलग से चुन करके रखूंगा, आप वो लेके जाओ। सो इट इज बेटर टू आस्क, पूछ लेना अच्छा है।
ओके बाबा।
सो एनी मोर क्वेश्चन ऑन ईशोपनिषद?
एक क्वेश्चन नहीं, जस्ट चेक है कि आपने दो क्लास पहले आगे के वर्सेस में 10 पॉइंट लिखवाए थे इन वर्स नंबर 13, तो आप कुछ वो शेयर कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर? कैन यू शेयर द 10 डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्स नंबर 13 ऑफ ईशोपनिषद?
वर्स नंबर 10,
मंत्र 13 प्रभु जी।
Do you want me to read it for you?
या फिर आप ग्रुप में या फिर इसको पोस्ट भी कर सकते हैं।
ठीक
है, जस्ट प्लीज अगर बोलिए।
ओके, सो आई विल सेंड इट टू यू मोस्टली, ये जो भी है यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप।
ओके, थैंक यू।
सो we stop Ishopanishad and we'll start after flash up some now. Okay, so we start after flash up some. This is a wonderful book, very sweet book, and this is nectar, Upadesh, Amrit. This is the nectar. So beautifully given, and we can offer our prayers. हमारे जो सर्वोच्च स्वामी हैं, उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों लोकानामित कारिण त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना वंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो जीव गोपालको। अनेक अनेक शास्त्रों का विचार करके उसमें वो निपुण है ये शेख गोस्वामी, और उनका उद्देश्य है सद्धर्म संस्थापक, जो वास्तविक शाश्वत धर्म जो है हमारा सनातन धर्म, उसके सिद्धांतों की स्थापना करना, और इसके द्वारा क्या होगा, लोकानाम हितकारिण, सारी मानव जाति को इसका लाभ प्राप्त होगा, और इसके कारण ये छह गोस्वामी जो है उनको तीनों लोक में सब उनकी पूजा करते, त्रिभुवन मान्य हो उनकी शरण ग्रहण करते, क्योंकि शरण्याकरो का अर्थ होता है जिनकी शरण लेने से हमारा उद्धार हो जाए। शरण्याकरो क्यों ऐसा क्या है? क्योंकि ये लोग राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंद देने मत्तालिक, राधा कृष्ण की जो दिव्य सेवा है, प्रेम सेवा, उसमें निरंतर गोपियों के भाव से निरंतर एब्जॉर्ब रहते ये शिव गोस्वामी, और इसके कारण उनकी सेवा उनका शरण, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बहुत ज्यादा बल देने वाला है, मेरे हृदय को स्वच्छ करने वाला है। और ये शॉर्टकट जैसा है, समथिंग लाइक आप इनकी शरण लेते हो तो आपका आध्यात्मिक प्रगति तेजी से होना शुरू हो जाता है। खास करके रूप गोस्वामी जिन्होंने ये ग्रंथों का निर्माण किया वैष्णव सिद्धांत को प्रकट करने के लिए, वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी सरेंडर सच वंडरफुल पर्सनालिटी रूप गोस्वामी। वी चैंट मंत्रस अगेन फॉर द इन्वोकेशन ऑफ मंगलाचरण। ओम अज्ञानचरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकेन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द सद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जो समझने वाले हैं और उन्होंने स्थापित किया इस संसार के भूतले, इस संसार के ऊपर जिन्होंने इसको स्थापित किया, ऐसे स्वयं रूप, ऐसे रूप को स्वयं कदामयम, कब ऐसा होगा कि ददाति स्वपदांतिकम, अपने चरण कमल वो मेरे सिर पर धारण करेंगे, उसका आश्रय मुझे देंगे, कब होगा। और उनका शरण इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि वो रागात्मिका भक्ति से, रागानुगा भक्ति से पूर्ण रूप से भगवान के शरण में स्थिर है। तार अनुगत भक्ति रागानुगा नाम है, जैसा हमने पढ़ा था ना पहले, तो ये अनुगत भक्त है, निरंतर राधा कृष्ण के अनुगत भक्त है। So therefore, this is special. Anu, anukar hota hai follow karna, jaise vritti, anuvritti. Bhaktivinoda Thakur pushya varshani vritti jo likha hai tika, pushya varshani tika, pushya pushpa varsha karne wala. Sour of the nectar vritti, anuvritti wo kehte hai. ये अनुवृत्ति जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा उपदेश अमृत के ऊपर एक्सप्लेनेशन जो उसको अनुवृत्ति कहा गया है। अनुवृत्ति का अर्थ होता है उसी प्रकार की वृत्ति या व्यक्तिगत स्वभाव का अनुसरण करना। वृत्ति जो है उनके जीवन, जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया है उस जीवन का अनुवृत्ति करना, उसको फॉलो करना। So there is anuvritti. So this is, first we will talk about preface and then further just shlokas hai अपने चर्चा करेंगे। सो आई वुड लाइक टू गिव यू द ओवरव्यू ऑफ दिस वंडरफुल बुक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, सच ए नाइस बुक। मे बी आप शायद मुश्किल से ऐसा आप में से कोई भक्त होगा जिन्होंने कभी ये बुक पढ़ा नहीं होगा, शायद मोस्टली आप सब लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ा ही होगा ऑलरेडी। आई जस्ट गिव यू द रेफरेंस of two or three. पहले श्लोक में मन और शरीर को वश में लाने के विषय में बताया गया है। But let us पहले जो 1-7 श्लोक है, वो 1-7 श्लोक जो है वो वैदिक साधन भक्ति के संबंध में आते हैं, 1-7 श्लोक पहले। और 8-9-10-11 चार श्लोक है वो रागानुगा साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो इस तरह से 3 चीजों में ये 4 श्लोक बैठे हुए। तो वैदिक साधन भक्ति के साथ और रागानुगा को लेकर के रागानुगा भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये है हमारी आगे की। तो पहले श्लोक में आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचाना जाए, उनकी क्वालिफिकेशन को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्पिरिचुअल फॉल डाउन को कैसे रोका जाए, आध्यात्मिक पतन ना हो हमारा, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति क्या हो उसका क्या प्रयास है, भक्तों के बीच में प्रेम संबंध बढ़े उसके क्या प्रयास है। अलग अलग प्रकार के जो भक्त होते हैं, मध्यम अधिकारी का दृष्टिकोण के आधार से, तो उनको किस प्रकार से भक्तों का संग करना चाहिए और अपराधों से किस तरह से बचना चाहिए। और ये हुआ छठा, पांचवा था संग के प्रति भक्तों का संग कैसे करना चाहिए, छठा है अपराधों से बचना चाहिए, सातवां है भगवान के दिव्य नामों का जो मधुरता है उसका पालन, उसको आस्वाद करके किस तरह से हम हमारे अज्ञानता का जो रोग है उसको दूर कर सकते हैं। और फिर आगे है रागों का साधन भक्ति, जिसमें वृंदावन में कृष्ण के जो पार्षद है उनके चरण चिन्ह पर कैसे चलना चाहिए उसके विषय में बताया है। फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, आई कैन जस्ट अगेन रिपीट इट अगेन, छह जो हमारे वेग है, पहला श्लोक शरीर और मन के वेग को रोकना, फिर छह चीज है हमारी भक्ति को जो नष्ट करने वाले जो छह एक्टिविटी उसको समझना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो छह एक्टिविटी है तीसरे श्लोक में उसका वर्णन है, भक्तों के बीच में छह प्रकार का जो लविंग एक्सचेंज होता है उसका वर्णन है चौथे श्लोक में, तीन प्रकार के भक्तों की श्रेणियां पांचवें श्लोक का ये था, छठे श्लोक में शुद्ध भक्त को देखने का सही तरीका, सातवें श्लोक में भगवान के दिव्य नामों का मधुरता का महिमा, आठवें श्लोक में भगवान के सनातन पार्षदों का शरण लेना, नौवें श्लोक में भगवान की जो लीलाएं है उसका, उसके लीला स्थली जो है उनकी ग्रेडेशंस कौन ज्यादा महिमाशाली, दसवें श्लोक में श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड का महिमा है, और ग्यारहवें श्लोक में राधा कुंड की कृपा प्राप्त करना और राधा कुंड के जल में स्नान करने का जो महिमा है वो इस श्लोकों में होता है। सो लाइक दिस इज अ स्पेशल बुक प्रीफेस, उसके पहले जो हम चर्चा करेंगे तो उसमें कृष्ण भावनामृत का जो गोल है, लक्ष्य और उसको प्राप्त करने की विधि, उसमें वृंदावन के छह गोस्वामियों का जो उपदेश संदेश है उसका शरण लेना ये उसकी विधि है, और उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने मन और इंद्रियों को वश में रखने का जो आदेश दिया है इस आधार पर हम आगे बढ़े। दिस इज मेंशन इन प्रीफेस, सो प्रीफेस एंड 11 श्लोकास व्हिच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ उपदेशामृत। आई वुड लाइक टू जस्ट रीड अ स्मॉल पर्पट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम इन दिस कनेक्शन। By devotional service only is one elevated to the transcendental planet Golok Vrindavan. भक्ति के माध्यम से ही भक्त गोलोक वृंदावन तक आगे बढ़ सकता है, और वहां पर भी केवल शुद्ध भक्ति का ही पालन हमें करना है, आध्यात्मिक विश्व में हो या इस संसार में हो, ये दोनों एक ही है। भगवान की जो भक्ति है वो चेंज नहीं होती, वो यही जो यहाँ पर वही भक्ति वहां पर मिलेगी, जैसे आम होता है वो आपको यहाँ पर भी दिया जा सकता है, लेकिन जब वो आम कच्चा होता है फिर भी वो कच्चा आम भी आम, उसको आम ही कहा जाता है, और लेकिन जब वो आम पक जाता है फिर भी उसका नाम तो आम ही रहता है, वो उसको आम ही कहते हैं। लेकिन उसका स्वाद बढ़ जाता है, वो रिलिशेबल हो जाता है। उस तरह से अध्यात्मिक गुरु और शास्त्र के इंजंक्शन से की गई जो भक्ति है वो उसको भी भक्ति ही कहा जाता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़कर के भक्तों के संग में आगे बढ़ने के बाद उसका रिलेशन बढ़ जाता है। There is no change, both are same. The difference is what? What is the difference? एक होता है कच्चा आम और दूसरा होता है पक्का आम, और पक्का आम जो होता है वो more relationable है। इसलिए भक्तों के संग में it is possible to mature in devotional service only in the association of devotees. श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 11 परपर्ट। सो दिस एग्जाम्पल स्पेशल प्रभुपाद तात्पर्य में ये उन्होंने बताया है। तो इस तरह से हमने पहले भी सुना हुआ इसके विषय में, तो मनुष्य जीवन पे पहले आता पशु जीवन, पशु जीवन से फिर हम आगे बढ़ते हैं भगवान के मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन से शरणागति, फिर साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कच्चा मैंगो कड़वा लगता है, फिर थोड़ा और कच्चा पक्का 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 और फिर एकदम पूर्ण रूप से पक जाता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट जो है वो रूप गोस्वामी के बताए गए मार्गदर्शन के अंदर होना चाहिए। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनको शक्ति संचारित किया गया था। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को उन्होंने समझा और चैतन्य महाप्रभु ने ही उनको ये आदेश दिया था। जहाँ पर आप तात्पर्य में प्रभुपाद के तात्पर्य में यही चीज पढ़ते हो कि भगवान उसी तरह से श्री गोस्वामी ने हमें ये उपदेश अमृत प्रदान किया है जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। जिस तरह से रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय को समझे उसी तरह से श्री प्रभुपाद भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हृदय को समझे थे। उन्होंने अपने तात्पर्य में ऑफरिंग में क्या लिखा था, एब्सोल्यूट एसेंशियंट थाउ हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी थाउ हैज रिमूव्ड। भगवान का जो परम सत्य जो है वो स्वरूपवान है, उनका स्वरूप है, वो निराकार नहीं है, ये आपने प्रमाणित कर दिया। और मायावादी लोग जो है उन लोगों को आपने हरा दिया, भगा दिया। तो श्री प्रभुपाद जी ने भी रूप गोस्वामी के समाधि का ही शरण ग्रहण किया था और वहीं पर बैठ करके राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने अपने ग्रंथों का लिखन कार्य किया था और उसका प्रकाशन किया था। और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो नाम है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट, कृष्ण भावनामृत संघ, ये कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण भावना शब्द जो है वो रूप गोस्वामी के द्वारा प्राप्त हुआ है। रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ का एक नाम, का एक ग्रंथ है, उनका नाम है कृष्ण भावनामृत। प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली वही जो शब्द है वही उन्होंने लिया है कृष्ण भावना आंदोलन के रूप में। सो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ हमारे लिए है, क्योंकि इससे चैतन्य महाप्रभु के मिशन को हम समझ सकते हैं और उपदेश अमृत के आधार पर हम अपने जो कार्य है उसको रेगुलेट कर सकते हैं और लंबे समय तक कृष्ण भक्ति में स्थिर रहकर उसकी प्रगति करना ये इतना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए हमें ठोस गाइडेंस चाहिए लंबे समय के, लॉन्ग टर्म के लिए। दिस इज गिवन बाय रूप गोस्वामी और इसका पालन करके हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। सो सत्वगुण में स्थिर हो सकते हैं इसका पालन करके, एंड धीरे 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 सब चीज हमारे सामने खुलती जाती है। क्लियर कट होता जाता है सारा दृश्य। तो मानसिक तर्क वितर्क बुद्धि से इंद्रिय के उपयोग से हम इसको समझ नहीं सकते। और अगर आप उस तरह से देखोगे कि आदो श्रद्धा तथा साधु प्रेम वगैरह वगैरह, तो इसको उसमें अगर आपको रखना है इसको, तो एक से तीन श्लोक जो है, एक श्लोक नंबर एक से श्लोक नंबर तीन, ये श्रद्धा में आता है, आदो श्रद्धा में। फिर श्लोक नंबर चार से श्लोक नंबर छह वह साधु संघ में आता है। फिर श्लोक नंबर सात, इसमें भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा और रुचि, ये चार वस्तु आती है श्लोक नंबर सात में। और श्लोक नंबर आठ जिसमें आसक्ति का वर्णन है, और बाकी के जो बचे तीन श्लोक है उसमें भाव और प्रेम। तो ये ग्रेजुअल सिस्टमेटिकली आगे हम बढ़ सकते हैं।
प्रभु जी प्लीज रिपीट करेंगे।
यस, एक से तीन श्रद्धा आदो श्रद्धा, फिर चार पांच छह, तीन श्लोक चार पांच छह वो है साधु संघ का महिमा। फिर टेक्स्ट नंबर सेवन जो है उसमें चार वस्तु है आगे की, आदो श्रद्धा तथा साधु संघ, उसके बाद की चार जो स्टेजेस है जनक्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा और रुचि। टेक्स्ट नंबर आठ में आसक्ति, और फिर बाकी बचे जो तीन श्लोक है उसमें भाव और प्रेम।
ओके
सर, जो मुख्य थीम है पूरे बुक का वह मन इंद्रियों का वश, हमारा व्यवहार, इस्कॉन का उद्देश्य, गुरु शिष्य का संबंध, भक्तों के संघ की महिमा, भक्ति और भक्तों की महिमा, भक्ति के स्टेज और डेवलपमेंट। दीज आर सम ऑफ द मेन थीम्स ऑफ प्रेशामृत। इज देयर एनी क्वेश्चन ऑन दिस प्रीफेस?
Prabhu ji, can you please repeat the main themes again?
Yeah. Mind and sense control. You want me to copy and paste for you? I can do it. It is from the notes. Okay, I have put on chat.
Okay, thank you, Prabhuji.
So is it clear? Samne hai aapke. Ravi Bhakti uska laab lena chahe. I mean, this is same thing we discussed, but this is more specific. Okay, so we can start test number one. Before that, any question? Okay. वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीर सर्वामपि वां पृथ्वीं सशिष्यात्। पढ़िए अनुवाद।
वह धीर,
पढ़िए पढ़िए माताजी।
वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है।
सो यहाँ पर गुरु कैसे बनता है कोई, उसके विषय में बताया गया है। मन और इंद्रियां वश में लाने के विषय में इस पर बल दिया गया है। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु ये तो गोस्वामी बनने के लिए है ना, हम थोड़ी संन्यास लेना चाहते हैं, हम तो गृहस्थ है तो हमारे लिए श्लोक रेलेवेंट नहीं है। नहीं, अब ये 11 श्लोक का जो उपदेशामृत है वो कंडेंस फॉर्म में सूत्र रूप में है, एक एक श्लोक में सूत्र के रूप में बताया गया है। हमें गोस्वामी बनने का अर्थ क्या होता है, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो ये केवल सन्यासी का कर्तव्य नहीं है, ये सबका कर्तव्य है। हम सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हम वास्तव में कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद, कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में वाचो वेगम शुरुआत नहीं किया, तात्पर्य ये तात्पर्य प्रभुपाद जी ने शुरू किया है प्रायश्चित के ऊपर से, पांचों वेगम के पहले प्रायश्चित का वर्णन किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में अधिकतर जो लोग होते हैं उनका भक्ति के प्रति अभिगम नहीं होता है। श्री प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञान से भक्ति जो है वो निम्न है, तो प्रभुपाद इसको हटाना चाहते हैं कि ज्ञानी और कर्मी से भी भक्ति श्रेष्ठ है। इसको एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो कि एक बच्चे के लिए बंदर अच्छा है या बिल्ली अच्छी है। तो क्या अच्छा है, बंदर बच्चा बंदर से खेले ज्यादा अच्छा है या बिल्ली से खेले ज्यादा अच्छा?
बंदर
बिल्ली
या
वेल प्रभु जी दोनों नहीं।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
या कोई नहीं,
दोनों भी नहीं।
यस, तो अगर दोनों की कंपेयर किया जाए कि दोनों में से कौन सा अच्छा है तो बिल्ली अच्छी है, क्योंकि बंदर का भरोसा नहीं होता है, राइट? सो इन द सेम वे, एनीवे दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। द आइडिया इज दैट भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, मंक ज्ञानी जो है और कर्म जो है वो हमारे लिए वो जो विधि है हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं, क्योंकि कृपा जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है भक्ति का। कृपा जो होता है वो भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए प्रभुपाद ये अटोनमेंट की चर्चा करते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने के लिए ज्ञान और कर्म को, ज्ञान और कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के कई लोग ऐसा मानते हैं, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए प्रभुपाद ने ये बताया। फॉर एग्जाम्पल पाप जो है, प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं इसको लेकर के, प्रायश्चित जो है उसके कई अलग अलग तरीके से आप इसको प्रायश्चित कर सकते हो, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। कोई भी अगर आप पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित करने की स्टैंडर्ड विधि है, कैसे आप उसको कर सकते हो प्रायश्चित। एक तो है ब्रह्म रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, योगा का पालन करना, तपस्या, ब्रह्मचर्य, मन इंद्रियों को वश में, वैराग्य, सत्यता, शुद्धता, योगासन वगैरह। तो एक एक तरीका ये है हमारे इसको रिकॉल प्रायश्चित करने के लिए, ट्रेडिशनल तरीका ये ब्रह्मचर्य तपस्या वगैरह, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम लगता है। सो इन द सेम वे दूसरा एक तरीका है डायरेक्ट प्रोसेस, जिसके माध्यम से आप तुरंत डायरेक्ट प्रोसेस से एक्सेप्ट कर सकते हो मां को। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था वर्ष जो श्रीमद भागवतम के चैप्टर्स करने हैं, इसमें अटोनमेंट को लेकर के प्रश्न पूछा गया था कि सही अच्छा सबसे अच्छा प्रायश्चित कौन सा है। तो प्रभुपाद जी ने इसका कहीं एग्जांपल भी दिए है इस तात्पर्य में कि अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित की विधियां हो सकती है। एग्जाम्पल तो पहले अपने लेटेस्ट टॉक समराइज रूप में तपस्या का डेफिनेशन क्या होता है कि मनुष्य अपने ज्ञान को स्थिर करने के लिए विकास करने के लिए स्वेच्छा से इच्छा से कुछ चीजों का त्याग करता है, दैट इज तपस्या। तपस्या ब्रह्मचर्य है ना, समय न चो धन चो त्याग ना सबसे सौचम चेमें ये तरीका है मेथड वन प्रायश्चित करने का। दूसरा मेथड है पंचरात्रि विधि तपस्या जो रूप गोस्वामी का मेथड है जिसमें आपको डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं कि साधन भक्ति का पालन करो, आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करो, भक्तों का संग करो और एसोसिएशन चार नियमों का पालन करो। तो ये है पंचरात्रि तपस्या। दिस वे देर आर टू डिफरेंट एप्लीकेशन, देर आर टू एग्जाम्पल के वी कैन कवर द एग्जाम्पल। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया हाथी के स्नान का भी, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल बट आई जस्ट टेक वन और टू। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया हाथी के स्नान का। हाथी के स्नान के एग्जाम्पल में क्या है कि कई लोग ये अटोनमेंट या प्रायश्चित की विधि का फॉलो करते हैं लेकिन फिर आके पाप करते हैं। जब तक अज्ञानता दूर नहीं होती तब तक पाप नष्ट नहीं होता है। तो एलिफेंट कुंजर शौचवत, कुंजर शौचवत का अर्थ क्या है, वो लोग स्नान करते हैं और करने के बाद फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं,
मिट्टी डाल देते।
यस, फिर से मिट्टी डाल देते। तो ये एग्जांपल वी हैव सीन कि दिस इज नॉट द राइट वे टू फॉर अटोनमेंट। परीक्षित महाराज ने क्या कहा, दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम विनानप्य आत्मनोहितम करोति भूय विवश प्रायश्चित्तम अथो कथम। तो ये परीक्षित मार्ग का एग्जाम्पल भी है कि एक कोई व्यक्ति जब देखता है कि चोरी हो रही है, प्रभुपाद तत्व में यह एग्जाम्पल देते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया है फिर भी वो चोरी करने का प्रयास करता है तो जैसे चार लेवल के स्टूडेंट होते हैं या लर्नर होते हैं। एक तो बुद्धिशाली व्यक्ति फर्स्ट क्लास, वो क्या करता है, शास्त्र और लॉ बुक के आधार पर यह सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर को पनिशमेंट प्राप्त हुआ, उसको अरेस्ट किया गया, तो फिर वो सोचता है कि मैं ये चोरी करना छोड़ दूंगा, दैट इज द फर्स्ट क्लास। जैसे उसको बोला गया कि तुम ये सब करोगे भक्ति के मार्ग में तो तुम्हारा आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है, तो सुन के ही मना कर दिया, छोड़ गया। उसके बाद फिर कुछ उससे लोअर अंडरस्टैंडिंग वाला, लेस इंटेलिजेंट, वो क्या करता है, वो चोरी करता है, पकड़ा जाता है, उसको दंड मिलता है, फिर छोड़ देता है। हाय बाप रे, ये तो लोग मारते डंडे मारते, चोरी करने में तो डंडा खाना पड़ता है, ये सच बोलते हैं ये लोग, इसने तो पुलिस पकड़ लेती है हमें, तो वो छोड़ देता है बाद में चोरी। उससे भी थर्ड क्लास आदमी क्या होता है, जो सुनता देखता है, पहले तो देखता है कि ऐसा हुआ, पहले सबसे पहले सुनता है कि ऐसा करना अच्छा नहीं है तो वो समझ जाता है। सेकंड क्लास का जो देखा किसी ने कि इसको ऐसा हुआ और फिर उसको पकड़ के ले गए, थर्ड क्लास कैसा होता है कि उसको खुद अनुभव करता है, उसको लड़े मार के ले जाते, और चौथा क्या होता है, इतना सब करने के पश्चात भी बोले ये तो रोज का है, रोज बाहर आता है, फिर वापस चोरी करता है, फिर वापस पकड़ा जाता है, दैट इज थर्ड क्लास लर्नर, ढीट हो गया वो थर्ड क्लास लर्नर. तो लाइक दिस अटोनमेंट डजंट वर्क दिस वे. मन्ये कुंजर सौचवत. तो कुंजर सौचवत, दैट एग्जांपल आल्सो वी हैव टॉक्ड. फिर प्रभुपाद कन्फेशन का भी एग्जांपल देते, बट एनीवे यू कैन गो अहेड विद दैट एग्जांपल. कन्फेशन, जब क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं और कन्फेशन बॉक्स में जाकर के कन्फेस करते रहते हैं कि मैंने मंडे टू सैटरडे ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, दैट्स इट, कन्फेस हो गया. अब मंडे सुबह उठता है, क्या सोचता है, सोचता है कि कल ही तो सारा कन्फेशन बॉक्स में जाकर के सब कुछ छोड़ के आया हूँ, तो आज तो खाली हो गया, मैं आज तो स्वच्छ हो गया, अब मैं सारा काम फिर से कर सकता हूँ, सारा नुकसान फिर से कर सकता हूँ, सारे पाप फिर से कर सकता हूँ. तो दिस इज द रॉन्ग अटोनमेंट, दिस इज रॉन्ग अटोनमेंट. इस तरह से प्रायश्चित नहीं होता. तो नाउ पंचरात्रिक विधि रूप गोस्वामी की जो है वो बड़ी आसान है. तो रूप गोस्वामी के आधार पर भक्तों की संगति से श्रेष्ठ उपाय कोई है नहीं. दिस इज द बेस्ट वे टू अटोनमेंट, फॉर अटोनमेंट देयर इज नो अदर. सो लाइक दिस आई कैन जस्ट गिव यू समरी ऑफ दिस, किस तरह से भक्तों की संग हमारी सहायता करते हैं. भक्तों का संग करने से भक्ति करने में उत्साह आता है. सारी इंद्रियां जो हमारी है उसको अनेक अनेक प्रकार का एंगेजमेंट प्राप्त होता है. भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, भक्तों का शरण लेने का अवसर प्राप्त होता है, और माया से हमारा सुरक्षा प्राप्त होता है. सो लाइक दिस द आइडिया इज द प्रायश्चित जो है उससे बचना, प्रायश्चित अगर करना है तो पंचरात्रिक तपस्या, दैट इज रूप गोस्वामी ने जो बताया उसके आधार से, गो दासा से वो स्वामी बनने का जो आदेश है रूप गोस्वामी, उसका पालन करना चाहिए. और अगर कोई इस तरह से फॉलो करता है तो फिर वो सभी शिष्य, सारे विश्व में शिष्य बनाने के लिए योग्य बन सकता है. गोस्वामी गोदास से गोस्वामी बन सकता है. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अटोनमेंट और इन बेटर वे टू प्योरिफाई अवर एक्सिस्टेंस बाय एक्सेप्टिंग द पंचरात्रिक वे ऑफ तपस्या. एंड द पंचरात्रिक वे इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंसेस, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, इनको वश में लाना. दिस इज द
प्रभु जी.
यस
प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, प्रभु जी ये, हाँ नहीं आप बोल रहे थे आगे तो मैंने जस्ट, प्रभु जी ये जो दो विधियां हैं तपस्या की, सॉरी अटोनमेंट की, तो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों प्रभुपाद ने पहले अटोनमेंट, प्रभु जी वो क्लियर नहीं हुआ मुझे, मतलब ज्ञान और कर्म से श्रेष्ठ भक्ति है ये बताने के लिए, पर अटोनमेंट क्यों, मतलब उसमें क्या रिलेशन है वो नहीं समझ में आया प्रभु जी.
अटोनमेंट का रिलेशन ये है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो सीधी दृष्टिकोण से वो पाप और पुण्य को देखता है.
ओके.
और भी साधारण व्यक्ति जो खास करके इंडिया के लोग हैं वो लोग सदा यही देखते हैं कि पाप कितना है, पुण्य कितना है.
ओके.
लेकिन सुपरफिशियल जो पाप और पुण्य है या पुण्य वगैरह जो है वो वास्तव में लंबा समय नहीं रहता है. तो जनरली पीपल वांट टू नो, लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अर्जन करना या योगासन करना, ये सब अच्छी विधियां हैं मन और इंद्रियों को वश में लाने के लिए. But they cannot understand that devotional service is the best way.
Best. Okay, fine.
Yes.
Okay.
More questions? Okay. So, vacho vegam. यहाँ पर छह वेग का बताया गया है, छह वेगों को रोकना. सो व्हाट इज अ वाचो वेगम? एक्चुअली वी कैन गो टू द कंक्लूजन फर्स्ट एंड देन वी डिस्क्राइब इट. कंक्लूजन क्या है? प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, ओनली व्हेन, द कंक्लूजन इज दैट ओनली व्हेन वी टॉक अबाउट डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड कैन वी रिफ्रेन फ्रॉम यूजलेस नॉनसेंसिकल टॉक. हम वाणी का जो वेग है उसको तभी उससे बच सकते हैं, उसको रोक सकते हैं जब हम भगवान के विषय में बात करें. हमारी बोलने की जो क्षमता है उसका पूरे पूरा उपयोग कृष्ण भावनामृत के महिमा को चर्चा करने के लिए और कृष्ण भावनामृत के लिए उसका उपयोग होना चाहिए. दैट इज प्रभुपाद हैज गिवन इन द पर्पट. बोलने का उपयोग हम जनरली कैसे करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में? लोगों को ये दिखाने के लिए कि आई एम स्मार्टर देन यू, लोगों को वश में लाने के लिए कि भाई मैं मेरे वाणी से मैं तुम्हें वश में ला सकता हूं. तो जनरली वी एवरीवन वांट्स टू टॉक, चपट 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 बोलना अच्छा लगता है. एवरीवन वांट्स टू टॉक, वेरी लेस पीपल वांट टू लिसन. बट व्हेन यू वांट टू टॉक, अगर आपको बोलना है, then you are, this is the only way you can control the urges. वाचो वेगम. प्रॉब्लम क्या है हमारा? कृष्ण भावनामृत नहीं हमारे हृदय में होने के कारण, और हमारी वाणी पर हमारा वश नहीं होने के कारण हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नॉनसेंस बोलते रहते हैं हमारा निरर्थक. जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं या बड़े बड़े मायावादी लोग, तो उसका तुलना शास्त्र में क्या कहा गया है? उसको जो मेंढक होते हैं ना, मेंढक बारिश के मौसम में बोलते रहते बोलते रहते, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि मेंढक बोल करके सांप को न्योरता देते हैं कि भाई देखो भाई तुम्हें इधर उधर ढूंढने की क्या आवश्यकता है, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं इधर आओ, मैं यहां पर हूं, मुझे खा जाओ. बेले बतोरु क्रम विक्रमान ये न सुनता करण पुटे नरस्य जित्वा सती दूर दूर दूरी के वसुत न चोपगायत्य उरुगाय गाथा. मैं ये श्लोक पढ़ा कैंटो 2 टेक्स्ट नंबर 4, कैंटो 2 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 20, जिसमें बताया गया है कि अगर जो मुख से भगवान का गुणगान नहीं होता है वह मुख वास्तव में क्या है? मेंढक की भांति मृत्यु को आमंत्रित करता है. आओ आओ मुझे मारो. So whatever nonsense people are talking all the time, bolte rehte. So that is, they're bringing their death closer. Aaj kal marne wale wo the, aaj mar jayenge. To fir wo log kya sochte hain? To kya hum bolna band kar de? You know, boundaries la tarna kar dete. But this is again a misconception. Prabhupada kehte hain ki vaani ke veg ko rokne ka arth ye nahi hota hai कि मौन व्रत धारण किया जाए बाह्य रूप से, जैसे मायावादी लोग सोचते हैं ऐसे. तो ये कुछ समय तक आपको सहायता करेगा, लेकिन वो फिर से अगेन, जैसे हमने पहले चर्चा किया हाथी के स्नान जैसा, वो फिर से फेल हो जाएगा. जैसे एक व्यक्ति का आश्रम में मौन व्रत का पालन कर रहा था और उसको साल में एक ही बार बोलने की सुविधा थी, उसको ऐसा व्रत था कि वो एक साल में एक ही बार बोल सकता है। तो पहला जब एक साल खत्म हुआ मौनी बाबा का, तो मौनी बाबा ने जैसे ही साल खत्म हुआ एक दिन उसको मिला था, एक बार बोलने का चांस मिला था एक वंस, तो उसने कितना केवल इतना बोला कि बम्पी बेड कि भाई मुझे मुलायम वो चाहिए सोने के लिए, अच्छी जगह चाहिए, बम्पी बेड मुलायम गद्दा दे दो। फिर एक साल का मौन है उसका, तो उसको मिल गया भाई एक बेड मिल गया सोने के लिए। और फिर एक साल और तपस्या किया उसने, मौन व्रत धारण किया। और फिर उसका सेकंड ईयर खत्म होने पे आया और उसको तक मिला कि वो फिर से एक शब्द बोल सकता है, तो उसने उच्चारण किया नेस्टी मॉस्किटोस, ये मच्छर मुझे परेशान करता है, मुझे मॉस्किटो नेट चाहिए। तो दूसरा साल भी खत्म हो गया और बाद में ये बोलने के बाद उसको मॉस्किटो नेट मिला। तीसरा साल आया, तीसरा साल पूरा मौन व्रत धारण किया और तीसरी साल में जब अंत में उसको बोलने का अवसर मिला तो उसने बोला मैं हार गया, आई क्विट। Then you left the mound run and then you started talking. So useless. This is useless solution. This is not going to work. The solution kya hai? Talk about Krishna. Prabhu Goswami kehte hai ki Krishna katha ka charcha kiya jaye. Bhagwan ke mahima ka gaan gaane ke liye vani ka upyog kiya jaye, and that is the only solution. Aur isliye jo bhakt hote hai wo mrityu ke जो क्लचिस या जंजाल होते हैं, मृत्यु का जो जंजीर होती है उससे पर होते हैं, प्रचार करने वाले मोस्ट मैग्नेनिमस प्रीचर देर अमृत कथामृत का पान वितरण करने वाले। तो प्रभुपाद ऐसा कहते हैं, जब इसको प्रभुपाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तात्पर्य को कम से कम हमें, ये जो पहला श्लोक है ना उसका तात्पर्य कम से कम 7 बार तो पढ़ना चाहिए, ओनली 7 times, कम से कम 7 बार पढ़ना चाहिए। ये अदर वर्ड्स अगर हम सही में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रभुपाद ने जितने भी ग्रंथ लिखे है, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत NOI NOD जितने भी, कम से कम 7 बार इसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, राइट। श्रीमद भागवतम पूरे, ऐसा नहीं कि वो तात्पर्य छोड़ करके तो कोई भी पढ़ सकता है, तात्पर्य के साथ पढ़ना है सब, एंड दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रभुपाद इज हेल्पिंग अस। ऑफ कोर्स एक बार पढ़ने में भी आपकी सहायता होती है, बट यू कैन रीड मोर एंड मोर, रिपीट। लेकिन प्रभु जी आप रिपीट की बात कर रहे हो, हम तो ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में हम प्रभुपाद के ग्रंथों को कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं 20 साल हो गया कृष्ण भक्ति में जुड़ा हूं, अभी तक भागवत नहीं पढ़ा है, प्रभु जी आप क्या बात करते हैं। इसलिए ये हमारी समस्या है कि हम प्रभुपाद के ग्रंथों को एकदम अंतिम प्रायोरिटी देते हैं। हमें लगता है कि ठीक है ना, भक्ति में इसकी हमारे व्यवहार की बोलबाला होती है, ज्ञान क्या है वो तो कौन देखता है सब। नो, दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। यू मस्ट रीड प्रभुपाद बुक्स अगेन एंड अगेन। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मुझे कोई भय नहीं है अपना, आई नो हाउ टू ग्लोरिफाई यू, बट आई एम टॉकिंग, आई एम ओनली अबाउट वरिंग अबाउट दिस पीपल, एथिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, मटेरियलिस्टिक, ऐसे लोगों से मुझे भय है। आई एम जस्ट वरिंग फॉर देम। So like this, we should always talk about Krishna, and this is the only solution. There is no other solution. So actual maunam जो होता है वो जीवा से नहीं होता है, actual maun होता है मन से। हमारे विचार अगर भौतिक चीजों से भरे पड़े हैं तो हमारे जीवा पर वो nonsense चीज आएगी ही आएगी। जब मन को वश में लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। So now we can talk about Manasavegam. Any question with this?
Yes, Hare Krishna.
Yes.
जैसे आपने बताया वाणी का वेग तो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कि मतलब हम जब अपने जॉब पे या मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत बोलने की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई वांट टू सेल माई सेल्फ, इफ आई डूइंग अ बिजनेस, इफ आई वांट टू सेल माई सेल्फ, देन आई हैव टू रियली बहुत सारी चीजें बोलने की जरूरत है. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ा ब्लफ भी करना पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू समहाउ सर्वाइव इन द मटेरियल वर्ल्ड. तो कभी वो अर्ध सत्य या कभी वो झूठ भी हो सकता है, बट समहाउ वी हैव टू डू इट बिकॉज दैट इज द सिस्टम. मतलब वो हमें, हम जानते हैं कि वो सही नहीं है, मगर ऐसा करना पड़ता है बिकॉज अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो इसको कैसे हमें देखना चाहिए?
When you say there is if, there is because, there is if and there is because, when you say it. तो देर इज, जहां अगर वहां से इफ निकाल लिया जाए और बिकॉज निकाल लिया जाए, उसके बाद फिर आप कुछ भी बोलते हैं वो सारा वाणी का वेग का उल्लंघन, आई मीन वो वाणी को रोकने का है. इट इज नॉट अबाउट यू डोंट वॉन्ट टू कंट्रोल, आप वाणी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन देर आर इफ, अगर हम ये करेंगे, हम ये करना है तो हमें ये करना पड़ता है. लाइक दिस बिकॉज, देर इज अ बिकॉज ऑल्सो, अगर हम ये इस तरह से ब्लफ करना पड़ता है. सो दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ योर ऑक्यूपेशन, इट्स अ प्रोफेशन. तो ऐसा नहीं कि आप छुट्टी के दिन में भी बैठ जाते हो भाषण देने के लिए और लोगों को समझाने के लिए. नो, इट डजंट, दिस इज नॉट सिनेरियो. सिनेरियो क्या है कि इस आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपका वर्क ऐसा है. अगर कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है और कॉल सेंटर में काम कर रहा है, उसको पूरा दिन बोलना ही पड़ता है, ऑल द डे. That is funny way, no. There is nothing to do with that. The point here is that हमारा जो उद्देश्य है, बोलने की जो क्षमता है, उसका उपयोग हम केवल भगवान की glorification के लिए करना चाहते हैं. Because आप material world में हो तो you need some money to survive. Same way, material world में you must understand that शरीर को धारण करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता है. अगर कोई ब्राह्मीन भक्त जैसे स्वरूप सनातन गोस्वामी अगर कहीं जाकर के भिक्षा मांगते थे, तो भिक्षा मांगने के लिए उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी. तो भिक्षा मांगने के टाइम पे जो कुछ बोला जाता था, क्या वो कृष्ण कथा थी? वो तो उनके अपने निर्वाह करने के लिए थे, लेकिन उनका निर्वाह करना ये भी तो कृष्ण भक्ति का भाग है. सो इन दैट वे वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी डोंट टॉक अननेसेसरीली. उसकी चर्चा आगे आएगी कि उसको प्रजल पर कहा जाता है. तो वी डोंट टॉक अननेसेसरीली, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है. लेकिन हमारी समस्या है, भौतिक संसार में गिरे हुए हमारे मन में बहुत सारे विषय चलते रहते हैं, मटेरियल विषय, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, और जो यहाँ पर कृष्ण का संबंध नहीं है, तो हम उसकी चर्चा करते रहते हैं. और उसमें कई बार, अधिकतर केस में हमारा संतोष होता है, हमारा वश नहीं होता है, इसलिए हम बैक बाइटिंग करना चाहते हैं, या निंदा स्तुति करना चाहते हैं, या फिर कृष्ण संबंध नहीं है, ऐसी कोई भी चीज, वी जस्ट वांट टू टॉक ऑन दैट, या स्पोर्ट्स के विषय में, या फिल्म सिनेमास के विषय में, बट वी वांट टू जस्ट टॉक. दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड. सो देयर इज द रीजन दिस कंट्रोलिंग ऑफ द स्पीच इज सिग्निफिकेंट.
थैंक यू प्रभु. प्रभु, कनेक्टेड एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मतलब ऐसे सिचुएशन होती है खास करके ऑफिस में, यहाँ पे आई एम फोर्स टू इंडल्ज इन मंडेन टॉक्स. तो उस समय मैं कोरा झूठ बोल के, मतलब एकदम प्लेन, मैं बिल्कुल झूठ बोल के वहां से मैं निकल जाता हूँ. तो दिस इज राइट.
वेल, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ योर ऑक्यूपेशन. जैसे कोई व्यक्ति किसी धंधे में है तो वो ऐसा बोलता है कि भाई देखो, मैं तो कोई मुनाफा नहीं ले रहा हूँ, मैं तो आपको उल्टा कोट खा के बेच रहा हूँ. लेकिन कोई व्यापारी ऐसा देता ही नहीं. प्रभुपाद हैज गिवन इन पर्पट ऑफ भगवद गीता कि कोई व्यापारी ऐसा माल देगा ही नहीं जिसमें उसको खोट होता हो, नुकसान होता हो. सो एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, अगर कोई झूठ बोलता है So it's a part of business only.
Yeah, I mean, मैं ये बोल रहा था कि जैसे in order to avoid them, उनको avoid करने के लिए कि वो मुझे मेरा समय ज़्यादा बर्बाद ना करे, mundane, क्योंकि मेरे, for example, my boss is fond of talking about politics and this and that, right? तो उसमें मुझे बिल्कुल भी interest नहीं होता है, तो मैं उसमें कुछ भी बहाना करके फोन आया ऐसा करके मैं निकल जाता हूँ वहाँ से and then I try to escape. So this is fine, right?
The idea is that talk what is required. Don't talk what is not required. अगर आपकी पोजिशन के लिए इट इज रिक्वायर्ड टू टॉक, जैसे सनातन गोस्वामी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, सो अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू टॉक टू नवाब हुसैन शाह ही विल टॉक, बट ही विल नॉट टॉक जस्ट फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन. सो द प्रभुपाद यूज्ड टू से टॉक एज मच यू रिक्वायर.
Right. Okay. Thank you.
So, Hare Krishna Prabhuji, yes. जो ज्यादा बातें करता है मतलब प्रजल्प और थिंक अगेंस्ट कृष्णा जो भी बात करता है, हाउ इज ही क्लोजर टू डेथ, इन विच सेंस यू सेड ही इज क्लोजर टू डेथ?
यू मीन यू से नॉन कृष्ण कॉन्शियस टॉक?
या नॉन कृष्ण कॉन्शियस टॉक जो होता है, in the beginning you said uske liye death is closer, right? So how yeah. is it,
how the death is closer? Because this is inviting the call, you know, inviting the call in the sense ki uske vaani ke madhyam se wo anap sanap charcha karta rehta hai aur adhik se adhik indriyon ko bhautik cheezon ke prati aakarshit karta hai. To parinam kya aayega कि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा कर रही है और उसका आयुष्य भी कम होता जाता है. कैसे कम होता है? बिकॉज ही इज इंडल्जिंग इन सिनफुल लाइफ. वो जैसे जैसे पाप बढ़ता जाता है वैसे 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 वो मृत्यु के और करीब आता जाता है. सो दैट वे इट इज गोइंग दैट टुवर्ड्स डेथ. ओके, सो मनसवेगम, वाचोवेगम, मनसवेगम. मनसवेगम का माइंड, मन जो होना चाहिए हमारा वो भगवान के चरणों में होना चाहिए. दैट इज द मेन सॉल्यूशन, आई मीन मेन थिंग, माइंड्स डिमांड. वेग जो है ना, वेग का अर्थ होता है जैसे किसी को खुजली आती है. तो खुजली आती है, अगर समझ लो मुझे पाँव में कहीं खुजन आ रही है, तो खुजन में क्या होता है कि मुझे अंदर से शरीर में से तीव्र डिमांड आती है कि भाई अपने हाथ लो, कैसे भी करके इसको खुजाओ. आपका मन वो विचलित हो जाता है, खुजली आती है. तो जैसे भगवान कूर्मदेव प्रकट हुए थे, कूर्मदेव को क्या खुजली आ रही थी. तो कूर्मदेव ने सोचा कि ये हाथ से खुजाने वाले तो हमारे काम में नहीं आएंगे. तो वो बोले कोई अच्छा नंबर वन सुप्रीम सॉल्यूशन होना चाहिए इसका. तो उन्होंने मंदरा पर्वत को जो पूरा रफ सरफेस वाला, तो भगवान ने सोचा मंदरा पर्वत सब तक खुजाएंगे. तो सुप्रीम पर्सनालिटी, तो उनका खुजाने का तरीका भी सुप्रीम है. तो मंदरा पर्वत उठाया, बोले तुम लोग ऊपर खेलो, समुद्र मंथन करो और मैं बड़े आराम से बैठ करके खुजाता. तो इसको गुरु खुलेगा तो खुजाएंगे भगवान. तो देर इज काइंड ऑफ अर्ज, जैसे किसी को बोलने का, मैं चुप नहीं बैठ सकता प्रभु, मुझे बोलना पड़ता है. फिर इसको सुनने का अर्ज होता है, वो सुनना पड़ता है उसको. म्यूजिक सुनेगा नहीं तब तक उसका दिन खतरे. किसको देखने, किसी को जीवा का अर्ज है, जीवा का वेग, जीवा वो सब आएगा उसमें. कृष्ण वेग, वेग में क्या होता है कि जैसे खुशबू आती है समोसा की, छोले भटूरे की, जैसे खुशबू आती है वो, फिर वो रुक नहीं पाता. नहीं, वो खाना ही पड़ता है. वेग, वेग का अर्थ होता है डिमांड्स. तो मन का वेग है बहुत प्रचंड होता है, वो भागना पसंद है उसको, फ्लिकर. सो प्रभुपाद कहते हैं इसमें कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है और किस तरह से कृष्ण की सेवा अच्छी तरह से की जाए इसके विषय में सोचता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका मन जो है वो बस में आ जाता है. दैट इज नेचर ऑफ माइंड, रेस्टलेस और फ्लिकर. तो योग की जो प्रक्रिया है मन को वश में लाने की, नेगेटिंग नैति नैति, वो हमारे विचारों को रोकने के में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती. इन अदर वर्ड्स, आर्टिफिशियल वैक्यूम क्रिएट करोगे ना माइंड के अंदर, आर्टिफिशियल वैक्यूम अगर आप क्रिएट करोगे माइंड में, तो वो ज्यादा तक अधिकतर रहता नहीं और वो अनर्थ को अट्रैक्ट करता है, अधिक अट्रैक्ट करता है अनर्थ को. ये हमारी समस्या है. वी कैनॉट स्टॉप द माइंड फॉर थिंकिंग. सो जनरली माइंड फिर आगे और बढ़ता जाता है इसके ऊपर. Because more and more dangerous. हमारा मन जो है वो वास्तव में हमारा शत्रु है. और धीरे 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 फिर ध्याय तो विषय संघर्षु जाए थे संघात समझाए थे काम. खास करके मनुष्य को चाहिए कि मन को लगाम दिया जाए. वही भगवत गीता का मेन थीम भी वही है कि मन को वश में लाया जाए, मन मना. सो हम सभी हमारे जो जीवन में जुड़ते हैं, हम सब कुछ ना कुछ गलतियां करते आगे 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 आते हैं. कोई ना कोई गलतियां करते रहते हैं. तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि मन को कैसे वश में लाया जाए. आध्यात्मिक जीवन में मन को वश में लाने का एकदम सिंपल तरीका है, गलत विचार को आने से रोका जाए. बहुत सारे गलत विचार आ सकते हैं मन के अंदर, लेकिन उसको रोकना पड़ता है. कई बार क्या होता है, हम पास्ट में चले जाते हैं कि पहले मैं ऐसा था. तो मन आप देखना 5 मिनट के अंदर तो कहाँ का सम, इसका कनेक्शन उसके साथ, उसका कनेक्शन उसके साथ, ऐसे कनेक्शन बनाते 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 कौन सी दिशा में पहुंच गया. फिर उसको बोला जाए भाई कहाँ पहुंचे, बोले मैं तो फ्रांस पहुंच गया था. अरे भाई वापिस आ जाओ, फ्रांस में कुछ काम नहीं, जरा यहाँ रहो. सो लाइक दिस इट सेज नथिंग, इट कनेक्ट सो मेनी थिंग्स. थॉट प्रोसेस इज सो स्ट्रांग दैट इट कैन गो टू एनी लेवल. और फिर वो चीज में फिर मनुष्य ये भी सोच सकता है कि उस समय तो बड़ा मजा आ रहा था, भक्ति के मार्ग में नहीं थे तब, तो आप माया के रूप में आकर्षित भी कर सकता है. तो रॉन्ग एलिमेंट्स के लिए मन को खुला मत छोड़िए. मन आपका शत्रु है, उसको अधिक मसाला मिलेगा. ये मसाला कहाँ से मिलता है, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से, बिलबोर्ड्स के माध्यम से. और कहाँ से मिल सकता है मसाला, हमारे कुछ ऐसे संगति के माध्यम से, ऐसे कुछ मित्रों के माध्यम से, जो लोग हमें कृष्ण से विपरीत या कृष्ण भावना में आओ, ऐसी चीजों का पूरा देते हैं रॉ मटेरियल. बोले ये पकड़ो, इसके विषय में सोचो और तुम्हारा मन जो है उसको कृष्ण से हटाओ. तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती से व्हाट बताइए, क्या कहा था, सबको पता होगा वो तो.
हाँ प्रभु जी, सुबह झाड़ू से मारना चाहिए और रात को चप्पल से मारना चाहिए.
कितनी बार मारना चाहिए? 100 बार झाड़ू से मारना है सुबह और 100 बार रात को मारना है. इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु जी मैंने कल से शुरू कर देंगे सुबह झाड़ू मारना. आइडिया इज नॉट दिस, आइडिया इज दैट सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम एंड इवनिंग प्रोग्राम, दिस इज द आइडिया. वी हैव टू कीप ऑन थिंकिंग अगेन एंड अगेन ऑन कृष्णा, देन ओनली द माइंड कैन बी कंट्रोल्ड. इतना चंचल है माइंड, इसका कोई लिमिट ही नहीं है. तो देन दिस वे वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स. देयर सो मेनी एग्जांपल, चिंतामणि बिल्वा मंगल का एग्जांपल हमने आपको पहले बता चुका हुआ. चिंतामणि जो वेश्या थी, बिल्वा मंगल कितना आकर्षित हुआ था वही मन. फिर विदुर ने धृतराष्ट्र को डांटा था, वो भी पकड़ के बैठा हुआ था अपने बीच को. और माइंड इज सच अ रास्कल, उसके लिए हमें दंड उपयोग करना पड़ता है. का हमने चर्चा किया था, भक्तिवान ठाकुर साम दाम दंड भेद ये चार है, तो काम वासना के लिए मन को वश में लाने के लिए दंड एकमात्र उपाय। That is only way, danda. So we have to bring our mind under control. खास करके कृष्ण के चरणों कमलों में मन को स्थिर किया गया। और दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि इफ यू हैव हायर टेस्ट परम दसवा निवर्तते, तो ये तुरंत लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। मन में अच्छी चीज है, कृष्ण सूर्य समाय है अंधकार, यहाँ नहीं था यहाँ क्या है आगे
यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार,
जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं हो सकता। सो हमें ये मन को कृष्ण भावना में स्थिर रखना चाहिए, और वही एक तरीका है खास करके भौतिक जगत में त्रिनादपि सुनिश्चय ना करोरपि सहिष्णुता, ये श्लोक का पालन करेंगे हम तो क्या होगा, भगवान के दिव्य नाम का बल हमें प्राप्त होगा। तो भगवान के दिव्य नाम का बल मिलेगा तो मन को वश में करना आसान हो जाएगा। मंत्र आए तो इति मंत्र, जो मन को वश में लाता है हम मंत्र है। सो लाइक दिस एज समरी वी अंडरस्टूड दैट मन को वश में लाना कितना आवश्यक है। प्रभुपाद भगवद गीता में भी कहे कोई भी योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग, अष्टांग योग या भक्ति योग, कोई भी हो, मन को वश में लाना वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी में माना जाता है। सो योगी का अर्थ होता है मन को वश में लाना। तो समा और दमा इज आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द लाइफ। सो वी कैन गो टू क्रोध वेगा।
हाय कृष्ण प्रभु जी, आई हैव अ डाउट।
यस,
जो आपने आर्टिफिशियल वैक्यूम की बात की, मन को कंट्रोल, जिससे मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो ये मैकेनिकल चैंटिंग होती है तो उससे भी तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, इट इज आल्सो काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ना।
इट इज नॉट आर्टिफिशियल वैक्यूम, बिकॉज मैकेनिकल चैंटिंग में आपका इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, बट एटलीस्ट यू आर यूजिंग योर टंग टू प्रोनाउंस द नेम। तो भक्त हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल गलती से नाम बोलता है फिर भी उसको फल मिलता है, तो मैकेनिकल चैंटिंग तो उससे अच्छा है। कोई अगर कहता है कि राज महिषी, तो राज महिषी का अर्थ होता है कि राजा की रानी, लेकिन राज का रा और महिषी का मा, तो उसमें राम आता है, राम राज महिषी में, तो फिर भी भगवान ऐसा मानते हैं कि उस व्यक्ति ने राम शब्द का उच्चारण किया, हालांकि उसने नहीं बोला है, उसने तो राज महिषी बोला है, बट दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी होली नेम राम। तो इस तरह से भी उसका पवित्रता भगवान के नाम का फल प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति मैकेनिकल भी करता है हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, स्टिल इज इम्प्रूविंग, बट उसका जो प्रोग्रेस का जो स्पीड होता है वो बहुत स्लो होता है, वेरी स्लोली प्रोग्रेस, वेरी स्लोली, और कभी कभी वो रुक जाता है। एंड व्हेन इज चैंटिंग, समझ लो कोई व्यक्ति मैकेनिकल कर रहा है, उसके पास एक इच्छा तो है, क्या, मैकेनिकल चैंटिंग करने की, वो इच्छा तो है उसके पास, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, तो इस तरह से वो आगे बढ़ सकता है। दिस वे इज ही कैन इम्प्रूव।
बेस्ट
सो नाउ यू कैन टॉक अबाउट क्रोध वेगम। यस ओके, सो क्रोध वेगम क्रोध वेग का क्या होता है कि जैसे ही यू नो प्रभु जी, हमें तो केवल केवल बहाना चाहिए, बस कोई कहीं पर भी बहाना मिल जाए तुरंत हम तैयार हो जाते हैं मैदान में आने के लिए। तुरंत क्रोध करेंगे, तो ये क्या वो क्या ऐसा क्या वैसा क्या, तुरंत शुरू हो जाता है। तो हमारी समस्या क्या है कि वी कैनॉट कंट्रोल अवर क्रोध, कैनॉट बी स्टॉप्ड। तो एक तो होता है डिस्टर्बेंस, अगर आप इसको सिस्टमेटिकली समझे तो इट इज अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस होता है तो मेंटल माइंड से थोड़ा सा क्रोध आता है, माइंड से और ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिर आगे आता है, नेक्स्ट स्टेप होता है एजिटेशन। एजिटेशन में क्या आता है, मानसिक रूप से आपके बहुत सारे विचार उसके अंदर इकट्ठा होना शुरू होते हैं और तब जाके आता है क्रोध, गुस्सा, स्पीक आउट, बोल दिया। और उसके बाद का भी स्टेज होता है, वो क्या होता है, कोल्ड वॉर। उसके बाद का स्टेज हृदय में एक प्रकार की हेट्रेट, वेश भर जाता है। मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता, मैं उसके प्रभु वो डांस कर रहा है कीर्तन में तो मैं नहीं करूंगा डांस, वो उसके साथ कोई मैं उसके साथ थोड़ी डांस करूंगा, नहीं उसके साथ डांस नहीं करूंगा कीर्तन में, लाइक दिस। सो दिस इज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रोध, ग्रजेस। सो लाइक दिस क्रोध के ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके हम डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली हमने पहले बताया ना ये सूत्र रूप है, इसको हम डिटेल करें तो एक एक सब्जेक्ट मैटर एंटायर सेशन वी कैन टॉक। बट क्रोध को सिंपल एग्जांपल के देता है, क्रोध का बहुत आसान तरीका है क्षमा, ऑलवेज क्षमा करना। पर ये हमें नहीं आता क्षमा करना, वी आर नॉट सॉफ्ट, हमें सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, डोंट टॉक, बोलो मत। So there are so many ways we can stop क्रोध। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 3 घंटे तक वो भगवान की डीटी वर्शिप का अच्छे से पूजा नहीं कर सकता। अगर किसी ने क्रोध किया है तो उसका शरीर जो होता है ना अपवित्र हो जाता है, तो फिर वो भगवान के विग्रहों की ठीक से पूजा नहीं कर सकता है। तो इट इज बेटर कि क्रोध हो सके तो ना करे, जहां से क्रोध को रोक सके उसको रोकना चाहिए। बाद में फिर क्या रिएक्शन की चेन शुरू हो जाती है, इसके इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, फिर वो फिर ये एग्जांपल दिया था आपको पता है, पांडवों के सामने क्रोध आया था फिर कृष्ण ने उसको हटाया था। सो अगर आप इफ यू आर परफेक्शनिस्ट, आपको सब कुछ एकदम नंबर वन चाहिए तो आपको हर एक मिनट में क्रोध आएगा, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, यू आर अ परफेक्शनिस्ट, आपको हमेशा सब कुछ एकदम नंबर वन चाहिए। दैट विल नॉट वर्क, दैट विल कीप ऑन मेकिंग यू प्रोवोक। सो वी हैव टू बी टॉलरेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। देन
प्रभु जी मेरे को किचन में जैसे मेरे को बहुत मैं पर्टिकुलर हूँ कि ये शुचि सेक्शन है और शुचि सेक्शन में 2 पार्ट है, ये भोग है ये प्रसाद है, तो अगर गलती से भी रमाकांत प्रभु ने प्रसाद के हाथ से भोग वाले आइटम छू लिया तो हमारी लड़ाई हो जाती है। तो फिर वो मुझे ये एग्जाम्पल सुनाते हैं कि आपने बोला कि टॉलरेंट होना चाहिए, ये है वो है, तो फिर मिलते रहते हैं लेकिन हमें इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये अभी भी हंस रहे हैं मुझे ताना मार रहे हैं, तो आप बताइए कौन सही है।
देखो इस बात में तो कौन सही है बोलना बहुत मुश्किल होता है तो ये तो इंडिविजुअल केस हुआ है, बट वी कैन से एटलीस्ट वन थिंग कि नियमों का चुस्त रूप से पालन करना चाहिए, साथ साथ में जो बात क्रोध से बताई जाती है वो प्रेम से भी बताया जा सकता है। कोई भी बात बताने के लिए उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रीजन दिया जाता है तो सामने वाला इस बात को गंभीरता से समझ सकता है, और साथ साथ में क्रोध सॉल्यूशन के रूप में उपयोग कभी नहीं हो सकता। क्रोध सॉल्यूशन के रूप में तभी उपयोग हो सकता है जब किसी वैष्णव या भगवान की निंदा हो रही हो, तभी उसका उपयोग किया जाता है, अन्यथा क्रोध का उपयोग किसी के लिए नहीं किया जाता है। सो ये भी एक सत्य है कि संसार में हम हर एक वस्तु नंबर वन नहीं मिल सकती, आदर्श तो बहुत सारी चीज होती है, लेकिन इन आदर्शों को सुरक्षित रखना या उस स्तर तक पहुंचना, उसके लिए समय की अवस्था, समय, कई बार समय चाहिए, कई बार परिपक्वता चाहिए, कई बार सिचुएशन चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें इसके पीछे फैक्टर रखती है। लेकिन इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि साधु शास्त्र और गुरु, इन तीनों के संपर्क में रह करके हमें हमारी जो सीमाएं है सहनशीलता की, आदर्श की, इन सब चीजों को हमें ग्रहण करना चाहिए। आइडिया इस सब का परिणाम क्या आएगा इस सब का, कि मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो आपकी भक्ति अच्छे से हो पाएगी। सो दैट इज द आइडिया। तो वो सूत्र है, दैट इज द आइडिया बिहाइंड ऑल। अगर वो हो जाता है, पीपल आर पीसफुल एट माइंड, तो उनके चैंटिंग, उनकी रीडिंग सब कुछ इम्प्रूव होना लगती है। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। तो आई मीन सॉरी आई कैन नॉट से स्ट्रेट अवे, बट ऑफ कोर्स वी कैन डिस्कस लेटर ऑन दिस पार्ट। या सो
प्रभु जी, आई विल कॉल
यू। सॉरी दैट,
मैं प्रभु जी कह रही हूँ कि जब भी हमारी लड़ाई होगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगी।
ओके देन आई विल कम एज अ न्यायाधीश।
यस प्रभु, मोस्ट
ओके।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
Yes.
प्रभु जी, इसी रिलेशन में मुझे भी कुछ पूछना था कि कई बार इतना ज्यादा पुशिंग आता है क्रोध का कि उस टाइम ये सब ज्ञान भी याद आता है, लेकिन फिर भी वो निकल के ही रहता है। तो बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन होता है वो।
yes,
क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में तो ये ज्ञान अप्लाई करके हम रोक लेते हैं, लेकिन फिर कई बार वो इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि फिर वो निकलता ही है ऐसे। और कभी याद आकर भी ज्ञान याद आता है तो भी ऐसा होता है कि नहीं निकाल दो पहले ऐसे, फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं मैं ये नहीं करती तो अच्छा था ये वो।
yes.
फिर बाद में फिर से होता है।
तो एक्चुअली जो रिपेंटिंग है ना, वो अच्छी बात है कि ऐसा मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो एक अच्छी बात है। क्योंकि वो रिपेंट करने से नेक्स्ट टाइम नहीं करने के लिए थोड़ा बल मिलता है। और दूसरी बात कि हमारा ये वश कम होता है क्रोध के ऊपर, इसके कारण हम सब कुछ जानते हुए भी क्रोध कर बैठते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस बार तो इस पार या उस पार, कुछ समय हमारे माइंड में ऐसा चलता होता है, बोल ही देते हैं। बट एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा कि उनका हस्बैंड बहुत क्रोध करता है, एक शिष्य को शिष्य ने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि उनके खाने में से मस्टार्ड सीड्स निकाल दिया जाए, उनको खाने में मस्टार्ड सीड मत दो, जो राई के दाने होते हैं ना वो मत दो, तो उससे उसका क्रोध कम हो सकता है। लाइक दिस प्रभुपाद इज गिव, प्रभुपाद ने एक बार ऐसे एक सॉल्यूशन दिया था एक बार। तो देर आर सॉल्यूशंस, लाइक कभी फास्टिंग करने का बताया जाता है, प्रसाद थोड़ा कम खाओ तो क्या होगा, अगर फास्टिंग करोगे या प्रोटीन वाला चीज कम खाओ तो क्या वो उत्तेजना कम होती है। बट दीज आर नॉट द मेन सॉल्यूशंस। मेन सॉल्यूशंस क्या है, भगवान और भक्तों की निंदा जहां पर होती है वहां पर खुल के आ जाओ मैदान में क्रोध करने के लिए। ऑफकोर्स कृष्ण भानुवंश आंदोलन में इस्कॉन में हमें साधु गुरु शास्त्र के गाइडेंस के अंदर ही क्रोध का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा निकाला खंजर तलवार और भी लग पड़े, ऐसा नहीं होता है। But Prabhupada has given very simple solution that anger can be controlled in Krishna consciousness if it is utilized for the blasphemy of Lord, against the blasphemy and Lord and his devotees. ऐसे क्रोध अच्छा भी होता है। भगवान चैतन्य ने जगई मदाई के ऊपर क्रोध किया, हनुमान जी ने लंका के ऊपर क्रोध किया, अर्जुन ने कौरव के ऊपर क्रोध किया। तो दिस क्रोध इज गुड, बट इट शुड बी अप्लाइड राइटली। काम कृष्ण कार्यार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध जो है उसको भक्त द्वेषी जने, भक्तों का जो द्वेष करने वाले लोग है उसके ऊपर क्रोध अवश्य करना चाहिए। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्रोध अवेगा, पांचो वेगा, मनस क्रोध वेगा, अब नाम है जिह्वा वेगा। जिह्वा वेग का अर्थ होता है कि प्रॉब्लम है हमारी, पैलेटेबल डिशेज खाना चाहते हैं। प्रभु जी आज हमारे पास मेहंदू वड़ा होना चाहिए, आज हमारे सामने समोसा होना चाहिए, और कोई बताओ भाई, और क्या होना चाहिए?
गुलाब जामुन, रसगुल्ला,
गुलाब जामुन, यस कचौरी होनी चाहिए. सो प्रभु जी लेकिन अभी गुलाब जामुन तो प्रभु जी बनाने में बहुत टाइम चलता है, बहुत टाइम चाहिए. अरे भाई छोड़ो ना बाहर में, वो बाहर मिलता तो है हलवाई के यहाँ से लेके आओ खाओ मजे से. अब मुझे बहुत अच्छा इच्छा हुआ है कि बहुत दिनों से मैंने ये पर्टिकुलर दुकान का पिज्जा नहीं खाया. अरे प्रभु जी हम लोग तो लेकिन बाहर खाने का अवॉइड करते है, कोई प्रयास करते कि हम बाहर का नहीं खाए. अरे भाई कुछ नहीं होता है, हम तो प्रभु ऐसा सब सोचते नहीं है. हम तो बस मन किया आज इसका खाना है और कल उसका खाना है तो हम तो खाते ही रहते बस. दिस इज बिकॉज ऑफ जीवा वेगम. भला जो जीवा है ना वो सुनता नहीं हमारी बात, लगा रहता है उसके पीछे. खाना चाहिए भाई, बाकी कुछ होता है कि नहीं होता पता नहीं, हमें खाना तो देना ही पड़ेगा. हम किसी को सुनते नहीं, हमारा यही काम है खाते रहो. एक पक्ष ने मुझे ऐसा साफ साफ बोला था कुछ साल पहले, बोले हम तो खाने के लिए ही जीते. मैंने उनको कहा कि आपको बिल्कुल शर्म नहीं बोलने में, बोले लेकिन प्रभु अब मैं तो आपके सामने शरणागत हूँ, आप जैसे बोलते हो वैसे करता हूँ. लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं खाने के लिए जीता हूँ. या आई मीन आई वॉज थॉट मैं ये साफ साफ बोल रहे खाने के लिए जीता हूँ. सो लाइक दिस पीपल आर लाइक दिस, मेनी पीपल आर लाइक दिस, वो खाने के लिए जीते हैं. So, this is
बिना खाए भी रहते हैं. अगर सही खाना नहीं मिला तो बिना खाए रहेंगे, इतना भी वो वेगी हुआ ना वो.
Yes. तो इसके इंटरनल तो बहुत सारी चीजें, जैसे कृष्ण प्रसाद देखते हो तो आप क्या देखते हो, बोले कृष्ण प्रसाद बाद में है लेकिन पहले तो खाने की आइटम है ना बहुत अच्छी, बाद में पता पड़ा अच्छा वो कृष्ण प्रसाद भी है. ओके ओके थैंक यू, जय प्रसाद हम की जय, ऐसा करके खाए. But that is not diarrhea. बहुत सारी चीजें इस पर इरेगुलर टाइम पे खाना, रात को 12 एक बजे भी अब 1 बजे सोचता है बोले रायपुर का भजिया खाना है पकौड़े खाना. The irregular time पे eating, that is because of जीवा वेगम. लेकिन कभी प्रभु खीर आती है मुझे बहुत पसंद है तो डालते ही जाओ भैया और दे और दे और दे और दे, ओवर ईटिंग लाइक दिस. This is all because of jiva vegam. रोग आता है, नींद आती रहती है, आलसी बन जाते हैं, गुस्सा चला जाता है, दूसरों को प्रसाद कम पड़ जाता है. There are so many problems happen out of this. और उसके अतिरिक्त स्टमक खराब हो जाता है. जीवार लालसा इति उति दाहे. जीवार लालसा, जीवा की लालसा इति उति दाहे. और फिर बाहर के आदमी का को क्या हुआ खाते तो मलिन होय माना, विषय अन्न खाएले मलिन होय मन. तो विषय का अन्न खाओगे तो मन मलिन होगा ही होगा धीरे धीरे धीरे. फिर उसका कथा भी है कि एक बार एक गुरु था उसका मलिन, उसके एक किसी चोर के घर पे राजा गुरु था, राजगुरु. तो वो किसी चोर ने उसका आमंत्रित किया तो उसके घर में भोजन लिया, भोजन लेकर के गया राजा के पास तो उसने वहां से कुछ चीज चुरा ली. तो राजा ने देखा कि गुरु चुरा क्यों रहे, सब कुछ तो उनका है. तो गुरु घर पे चला गया, राजा ने रोका नहीं कि गुरु पहले चोरी किया कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन ऐसा क्यों किया. बाद में गुरु वापिस आया, वापिस दे दिया, बोले मुझे क्षमा करना मैं एक ऐसे विषय के घर पे भोजन लेने चला गया था, उसके हाथ का खाया मैंने तो परिणाम यह आया कि मेरे मन में भी चोरी करने की इच्छा जागृत हो गई. जिसका जैसे खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन. इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसके हाथ का खाते हो. सॉल्यूशन क्या है इसका? प्रसादम, केवल प्रसाद ही खाओ और कुछ मत खाओ, नथिंग एल्स. और प्रसाद ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले, प्रसाद खाने से पहले प्रसाद को समझ करके खाओ ये प्रसाद ही है. या फिर शरीर विद्याजाल बोल करके, महाप्रसाद गोविंद बोल करके. तो प्रसाद का अर्थ क्या है? हम भगवान की कृपा ले रहे हैं तो उस तरह से भगवान का थैंक यू करके आप प्रसाद खाओ. तो दैट वे यू कैन कंट्रोल योर जीवा. प्रभु सेज अगर आप जीवा को वश में ला देते हो ना ये प्रसाद का, तो उसके लाइन में आने वाली तीनों इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती. इसलिए जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम. इसलिए जीवा को वश में लाना बहुत आवश्यक है. तो इन शॉर्ट हमेशा अपनी चॉइस का खाना खाने का हट मत रखो, केवल प्रसाद खाओ, आपकी रिक्वायरमेंट से अधिक मत खाओ जितना, भले ही आपकी फेवरेट डिश हो फिर भी, और स्केड्यूल के अनुसार खाओ, जब आपका खाने का टाइम है उसी समय खाओ, उसके अतिरिक्त इधर उधर कभी भी नहीं खा लो, और बाहर का खाना हो सके उतना अवॉइड करो, जिस वे अब हाँ एटीट्यूड चेंज होगा प्रसाद के प्रति, तो हमारे जीवा का जो वश है वो भी अपने आप होने लगेगा। सो उदर उदर वेकम उदर उपस्थ वेगम, सो उदर उपस्थ वेगम का अर्थ क्या है, उदर का अर्थ होता है पेट, पेट का अर्थ होता है आवश्यकता, उसने कहा उपस्थ वेगम, उपस्थ का होता है इलिसिट सेक्स, उपस्थ का होता है जननेन्द्रिया, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। सॉल्यूशन क्या है इसका, भगवान के भक्त को जन्म देने के लिए जो संबंध पुरुष और स्त्री का होता है वही भगवान के उसको वही उसका स्पिरिचुअलाइजेशन है, देयर इज नो अदर स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ दिस उपस्था इज टू प्रोक्रिएट फॉर कृष्णा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर वो सन्यासी थे, लेकिन वो कहते थे कि अगर मैं कृष्ण भक्त को जन्म दे सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, 100-100 बच्चे को जन्म देने को तैयार हूं, शर्त क्या होगी कि मैं कृष्णा के लिए कृष्ण का भक्त जन्म हो उसके लिए, बट आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं ब्रह्मचारी या सन्यासी रहना पसंद करता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुने बे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहे बे जबे मिले बे आने, सपने वो करो भाई ना करो भाई स्त्री संभाषण, गृह श्री छाड़िया भाई आसिया जीवन, यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगे रसने, छोटा हरिदासर कथा ठाकुर जैन मने, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, हृदय दे राधा कृष्ण सरोदा से भी दे। ये एग्जाम्पल हमें सीखना चाहिए, क्या है वैरागी भाई ग्राम में कथा ना सुनी बेकार है, नहीं सुना है ग्राम में कथा, स्वप्ने ना करो भाई स्त्री संभाषण, स्वप्न भी अगर आपको वास्तव में अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो इस वेग को रक्षा करना बहुत आवश्यक है इंद्रिय भोग के प्रति, क्योंकि इंद्रिय भोग प्रभुपाद यहां तक कहते थे कि अगर कोई सेक्स डिजायर से मुक्त हो जाता है तो 50% तो ऐसे ही लिबरेटेड हो जाता है वो, लेकिन अगर वो लेकिन ये ऐसी वृत्ति है शरीर की कि वो आप मरते नहीं तब तक जाता नहीं है, बूढ़ा सा बूढ़ा आदमी भी यही इसमें फंस जाता है, 70-80-90 साल का आदमी भी इसमें फंस सकता है। अकबर बीरबल का हमने बताया था एक बार आपको, अकबर मानने को तैयार नहीं था, कोई एक राजा था मानने को तैयार नहीं था, कि बोले ना 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 बूढ़ा होने के बाद थोड़ी उसका आकर्षण रहता है, तो बोले नहीं नहीं बोले मैं बताता हूँ ना, बोले कैसे, तो क्या किया एक बूढ़े व्यक्ति जो मरने ही वाला था कुछ समय में उसके पास लेकर के गए एक बड़ी सुंदर कन्या को, और जैसे कन्या के सामने उसको लेकर गया उसकी आंखें चौड़ी हो गई, और राजा ने बोला ये कैसा आदमी है, मरने को आया फिर भी ऐसा इंद्रियों के प्रति आसक्त है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, कि ये उदरोपस्थ का जो वेग है वो बहुत तीव्र होता है, लेकिन उसको केवल यही एकमात्र उपाय है कि उसको कृष्ण भक्त जन्म देने से उसको रोका जाता है और वश करना पड़ता है, वार्निंग एंड प्रिकॉशन दो उपाय है, पहले तो हमें दूर ही रहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रह सकते दूर तो उद्देश्य होना चाहिए क्या, कृष्ण भक्त का जन्म वही होना चाहिए, और वो भी सारे शास्त्र के नियमों के अधीन होकर के, अदरवाइज नहीं। सो अदरवाइज मटेरियल वर्ल्ड को हमें कैसा समझना चाहिए, पुनः पर सर्वित चरवाना, हाँ ये बार बार चबाई चुए चीज क्या, गधे के रूप में भी हमने सेक्स एंजॉय किया था, कुत्ते के रूप में भी किया था, बंदर के रूप में भी किया था, कबूतर के रूप में भी किया था, सब 84 लाख में यही तो करते हैं हम, तो अभी भी यही पर कर मनुष्य जीवन में भी यही करना है, नहीं तो उसके लिए किसके लिए है फिर ये, तपो दिव्यम, मनुष्य जीवन जो है वो तपस्या करने के लिए, अन्यथा प्रियव्रतानाम पुनः पुनः ऋतक चलवानाम, बार बार चबाए हुए चीज को फिर से चबाने के लिए। हो सकता है कि आपको लगे कि बड़ा मजा आ रहा है इसमें, लेकिन ये केवल आपको एक बूंद दे रहा है जो भी रिफ्लेक्टेड है, इसलिए वास्तविक आनंद नहीं है। तो इस आनंद के पीछे भागने से अच्छा है कि हम इसका त्याग करके कृष्णा के शरण में जा करके अपने आप को स्थिर करें। एंड कृष्णा विल हेल्प अस। कृष्णा कहते हैं श्रीमद् भागवतम में भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनता रहता है, बार बार सुनता रहता है, तो उसके हृदय का जो रोग है काम का, वो रोग हृदय रोग वो नष्ट हो सकता है। सो दैट इज द आइडिया, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन अवर डीलिंग। तो दिस इज द समरी ऑफ द फर्स्ट श्लोका। क्या है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम भीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेर धीर। ऐसा व्यक्ति जो धीर माना जाता है, जो छह प्रकार के वेगों को रोक सकता है, सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात, ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में सारे संसार में गुरु बनाने के लिए योग्य बन सकता है, गुरु बनने के लिए योग्य बन सकता है। तो दैट इज द आइडिया। कोई यह कहेगा प्रभु मुझे थोड़ी गुरु बनना है, लेकिन महाप्रभु का आदेश है, अमार आज्ञा है गुरु हया तारे देश, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सो इन अदर वर्ड, समय हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित करना है, दैट इज द आइडिया, देन यू कैन बी यू नो सक्सेसफुल। सो एनी क्वेश्चन विद दिस?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस
प्रभु जी, जैसे मंदिर में कोई फंक्शंस होते हैं, तब जो भी जो प्रसाद, जो ये प्रसाद बनाने वाले होते हैं बाहर वाले ही होते हैं।
यस,
ज्यादातर तो फिर उस समय तो हम प्रसाद सब लेते ही हैं।
यस, बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमारे भक्तों के अंतर्गत, अगर कॉन्फिगरेशन में ऐसे अहमदाबाद के इस्कॉन के बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पर कॉन्फिगरेशन मेंबर्स पूरा प्रसाद का लिस्ट क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं कि बेस्ट यही है कि भक्तों मिलकर के बनाए, लेकिन अगर हमारे पास सुविधा नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर बाहर का आदमी आए लेकिन हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे और हम अपने भक्त भगवान का भोग लगाएंगे और फिर प्रसाद के रूप में खाएंगे। तो स्टैंडर्ड्स का स्टेप बाय स्टेप हमें देखना चाहिए कि आइडियल जो होता है वो हमेशा सब जगह पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हमें एक स्टेप डाउन करना पड़ता है। दिस इज द सिचुएशन।
राइट, जैसे हम सभी द्वारका गए थे तो वहाँ भी जो प्रसाद बना रहे थे वो सभी बाहर वाले ही थे, तो ऐसी सिचुएशन में हमको तो वो तो लेना ही पड़ेगा प्रसाद।
लेकिन ऑर्गेनाइजर ने ऐसा सोचा होगा कि भाई भक्तों को सुविधा प्राप्त हो, या फिर इसको ऑर्गेनाइज अच्छे से करने के लिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो डिसीजन दैट इज अ मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसलिए कई बार आइडियोलॉजी का स्टेप डाउन करना चाहिए, करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। इसका आउटकम देखना चाहिए कि इसका आउटकम क्या है। हमें याद है कि अधिक भक्त का आध्यात्मिक लाभ हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, अगर प्रसाद भी भक्तों के द्वारा कुक किया हुआ मिल जाए तो दैट इज आइसिंग ऑन द केक। लेकिन अगर आइसिंग नहीं मिली तो केक खाना बंद करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, आइसिंग बिना के केक भी खा लेंगे हम बात।
प्रभु जी ऐसा देखो तो यानी वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, ऐसा ही हुआ ना, अगर इस पर शास्त्र हम हर चीज फॉलो कर
नहीं
पॉसिबल नहीं है।
प्रैक्टिकल हमें देखना चाहिए और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन साधु गुरु शास्त्र। साधु गुरु शास्त्र से कुछ मेजर डिसीजन होते हैं तो उसमें हमें साधु गुरु शास्त्र का सहयोग लेना पड़ता है कि भाई कहाँ पर मैं प्रैक्टिकल होने का प्रयास करूँ और कहाँ पर नियमों को फॉलो करने का प्रयास करूँ, तो उसके बीच का एक सीमा तो होना चाहिए, तो वो सीमा साधु गुरु शास्त्र बताएंगे।
ओके,
तो मोर क्वेश्चन
प्रभु जी, ये जो 6 के 6 वेग हैं ओवरऑल अगर यंग जनरेशन को देखा जाए तो ये सभी 6 के 6 गुण में तीव्र रूप से होते ही है, जैसे कि कॉलेजियंस हैं या यंगस्टर्स जो भी है, एंड उनको उनके लिए ये स्वाभाविक सा हो जाता है, मतलब कंट्रोल करने की बात तो दूर की बात है, एवरी वे में उनको यही होता है कि भाई हम तो अभी इवन कंपैरिजन भी लोग करते हैं तो ये तो अभी जवान खून है, या हर एक दृष्टि में चाहे वो जीभ हो, विच एवर माइंड हो, लाइक एंगर हो, ऑल 6 आर इंक्लूडेड. तो उनके लिए जैसे ये स्वाभाविक बोला जाता है या नेचुरल है, तो ऐसे में क्या कैसे कंट्रोल किया जाए कोई व्हाट यू से एनाटॉमी ऐसा हो जाता है.
द अर्जेस द वेगास आर स्वाभाविक फॉर एवरीबॉडी. ऐसा नहीं है कि बच्चा हो ज्यादा बड़ा होता है, कोई भी कोई ना कोई वेग तो स्वाभाविक होता ही है सबके लिए, और खास करके युवावस्था में जब इंद्रियां तगड़ी होती है तो ये सभी चीज फुल ऑन काम करती है. सभी जो इंद्रियों के जो वेग होते हैं बहुत तीव्र होते हैं, और लोग ऐसा सोचते हैं कि जवानी तो होती है भोग करने के लिए. आजकल ये मटेरियल लोग वर्ल्ड में ऐसे लोग ऐसा मानते हैं, तो उसमें जितना भोग कर सकते हो कर लो. द आइडिया इज दैट चाहे जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, कोई भी अवस्था में हो, ये जो 6 वेग है वो वेग को वश में लाए बिना कोई व्यक्ति मन को भगवान के चरणों में या भक्ति मार्ग में स्थिर नहीं हो सकता है. इसका परिणाम यह आएगा कि उसका जो लाइफ होगा पूरा वो एकदम टॉपसी टर्वी या फिर एकदम मिसमैनेज या कैओटिक हो जाएगा. क्योंकि अगर कोई सारी इंद्रियां अगर घोड़े की तुलना दी जाए तो घोड़ा एक भी अगर वश में नहीं रहता है तो आपके रथ को गिरा भी सकता है. तो इसलिए ये 6 वेगों को चाहे युवावस्था में हो या फिर बुढ़ापे अवस्था में हो तो इसको तो वश में करना पड़ता ही है, देन ओनली वन कैन कंट्रोल. कोई कहेगा कि प्रभु जी अब मुझे इस उम्र में नहीं खाने दोगे तो कब खाने का. अरे भाई हम खाने के लिए थोड़ी जीते, हम प्रसाद के रूप में जो खाना है खा सकते हैं. प्रभुपाद यूज्ड टू से कि जवान लोग डबल खा सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रभुपाद एक बच्चे को कहा कि मैं खा सकता हूँ, प्रभुपाद ने कहा तुम खा सकते हो, लेकिन तमाल कृष्ण खा सकते है? बोले नहीं, तमाल कृष्ण नहीं खा सकता. क्यों? क्योंकि वो तुमसे बड़ा है, वो उनके लिए ठीक नहीं है. प्रभुपाद से लाइक दिस फॉर वन चाइल्ड, मैं नहीं खा सकता, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा डाइजेशन कमजोर है, मैं तुम्हारी तरह नहीं खा सकता. बट आइडिया इज दैट इस चीज को कंट्रोल किया जाए प्रसाद के माध्यम से. ग्रेजुअली इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड, तब आएगा फिर लास्ट में क्या आएगा, आहार निंद्राहार विहार काज विजित हो चाहते, तो वो तो एकदम टॉप मोस्ट अवस्था है. तो जैसे भक्तिनाथ ठाकुर, प्रभुपाद, शेख गोस्वामी, ये लोग 1-1.5 घंटा सोते थे दिन में और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था. हम लोग ऐसा नाटक करेंगे तो 2 दिन में बीमार हो जाएंगे. तो वी कैनॉट डू दिस वे, बट रादर वी कैन डू द मिनिमम रिक्वायरमेंट. क्या? प्रसाद ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, और बाकी जो 2-3 चीज हमने बताया आपको, तो जीवा के लिए, फिर सेक्स, तो सेक्स के लाइफ में विवाहित जीवन के अंदर केवल कृष्ण भक्तों को जन्म देने के लिए बच्चे पैदा करना, मन तो मैं मन को इधर उधर मसाला भरने से रोकूंगा, लोगों से ऐसे लोगों से नहीं मिलूंगा कि जो मेरे मन को भगवान से दूर ले जाए, वाणी तो भगवान के विषय में ही बोलने का प्रयास करूंगा. लाइक दिस देयर मिनिमम सॉल्यूशंस आर गिवन, इसको फॉलो करेंगे तो वश में तो आएगा और बाद में फिर आइडियल अवस्था तक पहुंच जाएंगे. दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट.
मतलब माय पॉइंट वाज कि ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते तो आगे जाके वो हैबिट बन सकता है, एंड लेटर ऑन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल.
देयर इज नथिंग व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड प्रोवाइडेड दैट यू आर अप्लाइंग द राइट सॉल्यूशन.
यस सर.
ऐसा कुछ कोई अगर ये कहता है कि आप कोई भी कॉल, प्रभु जी आप कोई भी सॉल्यूशन ले आओ, कृष्ण भक्ति का सॉल्यूशन ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन मैं इतना प्रबल हूं कि कृष्ण भी मेरे सामने कमजोर हो जाएंगे, नो दैट इज नॉट द सिचुएशन. कृष्ण जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार. तो हमारी जो अर्जिस है, जो वेगा है शरीर का, वो बिकॉज ऑफ हमारी इग्नोरेंस के कारण है. वी हैव टू कंट्रोल दैट. यस, मोर क्वेश्चंस. यस
प्रभु, ये जीवा वेगम और उदर वेगम में क्या डिफरेंस है? मतलब जैसे इट लुक्स वेरी सिमिलर.
या
मतलब व्हाट इज द सटल डिफरेंस?
मेजर डिफरेंस इज दैट वन इज अबाउट द टंग एंड वन इज अबाउट द बेली. बेली का अर्थ होता है कि वन शुड ईट एज मच एज वन इज रिक्वायर्ड टू ईट. जीवा वेगम उदर अपस्थ वेगम. उदर पस्त, उदर 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 का वेग है. उदर का वेग क्या है कि वी वांट ओवर ईटिंग, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए. जैसे प्रसाद खाने का एक लिमिट होता है कि प्रसाद, एक भक्त ने मुझे बोला था अभी कुछ समय पहले कि प्रभु जी प्रसाद खाने से पवित्र हो जाता है ना. मैं कहा पवित्र हो जाते हैं? तो प्रभु जी हम डबल तीन, दो गुना तीन गुना प्रसाद खाए तो ज्यादा पवित्र हो जाएंगे. मैंने कहा नहीं, वो फॉर्मूला गलत है. इस तरह से पवित्र नहीं हो सकते आप, राधर इससे तुम बीमार पड़ जाओगे. सो यू शुड नॉट डू दिस, दिस इज अ फुलिशनेस. ये बचपना है कि अगर कोई ज्यादा प्रसाद खाएगा तो ज्यादा शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. आइडिया इज दैट यू ईट प्रसाद एंड यू सर्वाइव टू चैंट द होली नेम. भगवान के शरीर और आत्मा के उसको एक रखने के लिए, जीवन जीने के लिए जो खाना चाहिए उतना हमें खाना है. दैट इज बेली, उदर उधर आओ. जीवा का क्या था, हो सकता है कि शुरू शुरू में प्रभु जी हमारा तो वश नहीं होता है तो हम क्या करें. हमें तो सब इच्छा होती है ये खाने की वो खाने की. तो प्रभुपाद सेड ओके, इफ यू हैव डिजायर टू ईट समथिंग सो यू कैन एटलीस्ट ऑफर इट एंड देन एक्सेप्ट. दैट इज निष्काम कर्म योग. कि आपने पकौड़ा खाने का इच्छा हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, पकौड़ा बना करके भगवान को अर्पण कर दें. तो आपके लिए प्रसाद इम्पोर्टेंट नहीं था, आपके लिए पकौड़ा इम्पोर्टेंट था. बट बिकॉज आपको ये पता था कि मैं ऑफर के बिना खा नहीं सकता हूँ तो आपने ऑफर कर दिया. सो इट्स अ गुड, इट्स नॉट बैड, बट इट्स नॉट द बेस्ट. बेस्ट क्या है, आज भगवान को क्या खाने का इच्छा होगा, सो लेट मी ऑफर हिम पकौड़ा उसके लिए. दिस इज द बेस्ट. तो नो प्रॉब्लम इफ समबडी हैज अ डिजायर टू ईट डेलिशियस थिंग, यू कैन ईट आफ्टर ऑफरिंग कृष्णा.
राइट, जो उधर है इट इज मोर अबाउट अत्याहार एंड ऑब्जर्विंग फास्टिंग, राइट, एंड अंडरगोइंग तपस्या
टू ईट एज मच रिक्वायर्ड.
राइट राइट. एंड जीवा जो है वो ईटिंग मतलब कंट्रोलिंग टू ईट पैलेटेबल डिशेस व्हिच आर नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा.
स्वाद, स्वाद के स्वाद का वेग है.
थैंक यू.
So this is the idea.
हरे कृष्ण प्रभु, एक क्वेश्चन है. और जैसे हमने आगे जस्ट हम स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि जो है वो पंच रात्रि का जो सिस्टम है, विधि है, वो हम फॉलो कर रहे हैं. तो आप उस बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा?
उसका जैसे कोई डॉक्टर होता है वो आपको कहते हैं कि 16 माला जप करो, चार नियम का पालन करो, और ये 10 काम अपराध है, ये बाकी वैष्णव अपराध है, ये सेवा अपराध है, ये दाम अपराध है, इन सब चीजों से बचो, और 64 नंगे है भक्ति के ये है इसका पालन करो, और ये नवदा भक्ति जो मुख्य है इसका पालन करो. सो देर आर डूज देर आर डोंट्स. तो दिस इज पंचरात्रिक विधि गिवन बाय रूप गोस्वामी कि अगर आप भक्ति के विधि विधानों से द्वारा जो तपस्या करते हो, भक्ति के विधि विधानों के द्वारा, वो तपस्या वास्तव में सही प्रायश्चित है, और बाकी के जो प्रायश्चित है वो सब कौन से थे, यू नो एक्सटर्नल सुपरफिशियल, कन्फेशन बॉक्स में जाकर कन्फेस करना. तो इसमें क्या अज्ञानता नष्ट नहीं होती, और अज्ञानता नष्ट नहीं होती तो फिर से वो व्यक्ति पाप के प्रति आकर्षित होगा और फिर से गलती करेगा, और फिर वो उस प्रकार का थर्ड क्लास आदमी बनेगा कि जो चोरी करने के बाद पकड़ा गया, बाहर आया, फिर चोरी करेगा. तो दिस इज द नॉट द परफेक्ट सॉल्यूशन. Perfect solution is only Krishna consciousness.
So Panchratrika system was also followed in Gaudiya Vaishnava before Rupa Goswami.
Well, Chaitanya Mahaprabhu has established all these devotional principles in detail. And before that, Madhavendra Puri was following the parampara. But Madhavendra Puri was Nitya Siddha Bhakta. So he was having all this unke ye Vaishnava Uchit jo acharan hai. Ye jo kaha jata hai ki jo prem ka prakash hai. Prem bhakti ya bhav bhakti, prem bhakti. This is Madhavendra Puri was the first person actually. It's called the root Madhavendra Puri. So, before Madhavendra Puri, Bhakti Yoga jo hai, usko itna ujagar, you know, not very expanded. Of course, Naradji is there, but jo Vraja Bhakti hai, Uttam Bhakti hai, us Bhakti ka jo Raghavan ka Bhakti hai, Bhav Bhakti, Prem Bhakti, उसका प्रकाश तो महाप्रभु के आने के बाद ही हुआ और उसका जो साइंस है वो तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है. वैष्णव साहित्य, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ साहित्य. जो वेदों में आता है उसमें एक कैटेगरी सेपरेट है, दैट इज वैष्णव साहित्य. तो वैष्णव साहित्य का प्रकाशन हुआ चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद. लास्ट देव डिडंट डू मच ऑन वैष्णव साहित्य. ही टॉक अबाउट श्रीमद भागवतम ओनली मोस्टली. That is the idea.
Okay, thank you. Because Gaudiya Vaishnava में ही ये पंचरात्रि का सिस्टम मेनली फॉलो करते हैं इन इस्कॉन एंड द रूप्स. I will tell them about the select this question.
Yes, some of them are also followed in other sampradaya. Not all, but some of them are also followed in some other. Bhagavat Marg, Pancharatrik Marg. फिर एक होता है तांत्रिक मार्ग, जैसे जगन्नाथपुरी में तांत्रिक मार्ग होता है. बट आई मीन वी डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल इन ऑल दिस डिफरेंट मेथड्स. सो वी आर स्टिकिंग टू रूप गोस्वामी. जो रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया है वही मेथड को हम एक्सेप्ट करते हैं. बिकॉज चैतन्य महाप्रभु चारों संप्रदाय का जो एसेंस है उन्होंने इकट्ठा करके हमें दे दिया. सो वी हैव नथिंग टू बॉदर ऑन.
थैंक यू.
So, text number 2 is a very famous sloka. These are all KMV. I would suggest ki jo pehle 4 slok hai aap jo hai usko kanthas kar lena chahiye. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janasangascha lolyamcha sarvir bhakti vinashyati. Hamari bhakti mein rukawat kya sakti hai aur hamara bhakti mein kaun si aisi cheeze hai ki jo hamari bhakti ko विनश्यति, नाश ही कर देगा भक्ति को. वो पढ़िए ट्रांसलेशन.
जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है. और पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना. दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है. तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना. चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता मन माना कार्य करना. पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संस्कृति करना कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखना. छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लालायित रहना.
यस, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षडभिः भक्ति विनश्यति. दिस आर वन बाय वन अगर आप देखोगे तो हम हमारे आचरण से हम महात्मा भी बन सकते हैं और हम आचरण से हम दुरात्मा भी बन सकते हैं. महात्मा क्या होता है? वो योग माया के अंदर में काम करता है और दुरात्मा होता है वो माया के अंदर अंतर्गत काम करता है. हम तटस्थ शक्ति है जीवात्मा और इसलिए मार्जिनल ट्रांसलेटर मार्जिनल अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते कृष्ण भावना then Krishna helps us to come to this. लेकिन अगर हम इन अगर हम खुद माया से प्रभावित होते हैं, जैसे ये कुछ चीजें है जो ऐसे कार्य जो हमारी भक्ति को नष्ट भी कर सकते हैं, वी हैव टू यूज इट, वी हैव टू मेक अ प्रॉपर यूज. कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है. जैसे $100 वाला एग्जांपल आपको याद है राइट, अगर एक नोट पड़ी $100 की तो आप क्या करेंगे? वो एक ज्ञानी कर्मी होता है, वो क्या करेगा? सीधा पॉकेट में डाल देगा. कर्मी या चोर जैसा हो जाएगा. ज्ञानी होगा वो क्या करेगा? वो वहीं पड़ा रहने देगा कि उसका उपयोग कैसे करना उसको आता नहीं. लेकिन भक्त जो होता है उसको पता है कि शरीर का उपयोग कैसे किया जाए, तो भक्त क्या करेगा? उसको पिक, उसको उठाएगा और उसके मालिक के पास पहुंचा देगा या उसको भगवान की सेवा में लगा देगा. तो बहुत सारे नीति नियम है, उसका उद्देश्य केवल क्या है? भगवान का चिंतन करना और भगवान कभी भूलना मत नहीं. सो दैट इज द आइडिया. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह. तो ये नियम है हमारे. अगर कोई साधक है भक्ति योग में, अगर वो बहुत ज्यादा एक्युमुलेट करने की धारणा इच्छा रखता है, अगर वो बहुत ज्यादा एक्युमुलेट करने की इच्छा रखता है जो आवश्यकता के भी अधिक, तो उसके आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है. एनीवे मटेरियल वर्ल्ड में आप कितना भी धन कमाओगे, कितना बड़े महल बनाओगे रहने के लिए, कितना भी सुविधा करोगे, बच्चों को विदेश पढ़ाओगे, वॉट एवर यू डू, सब कुछ मृत्यु के समय पे नष्ट हो जाता है. तो इसलिए अधिक संचय करना, संग्रह करना, ये भक्ति के मार्ग पे हमारा व्यवधान क्रिएट होता है. जैसे एक्युमुलेशन में भी दो प्रकार होता है, मटेरियल एक्युमुलेशन, स्पिरिचुअल एक्युमुलेशन. तो इन शॉर्ट, अत्याहार को हमें समझना चाहिए कि किस तरह से हमारी भक्ति को नष्ट करता है. अत्याहार का अर्थ क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्युमुलेशन. या
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये स्पिरिचुअल एक्युमुलेशन भी हार्मफुल हो सकती है, और होती क्या है मतलब?
स्पिरिचुअल लॉलिम इज गुड. स्पिरिचुअल एक्युमुलेशन का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए जितना आवश्यक हो उसके अतिरिक्त हमें ज्यादा अत्याहार नहीं करना. जैसे बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना, दैट इज उसका हमने एक बार आपको एग्जांपल दिया था पहले कि वन शुड नॉट यूज आवर टेंडेंसीज, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमने पढ़ा था. तो बट दैट इज वेरी रेयर. भक्त लोग होते हैं, स्पिरिचुअल एक्युमुलेशन इज गुड इन अ वे, बट द पॉइंट हियर इज दैट उद्देश्य क्या है ये समझना चाहिए हमें. जैसे कुछ भक्तों को होता है जैसे प्रसाद को एक्युमुलेट करना, कोई कहेगा प्रभु मैं तो प्रसाद का संग्रह नो, बट द उद्देश्य वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो यू कैन नॉट डू दिस संग्रह करना. सो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल, एक्युमुलेशन मोर देन नेसेसरी इज नेवर गुड. एंड जहां तक आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भक्ति की इच्छा या ज्ञान या सेवा, इसका एक्युमुलेशन इज फेवरेबल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो वो लौल्यम वो ठीक है. जैसे कहेगा जनरल संघर्ष लौल्यम, तो उसमें इस विषय में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज स्पिरिचुअल लौल्यम एंड व्हाट इज मटेरियल लौल्यम, दैट वी विल डिस्कस इन दैट. बट मटेरियल एक्युमुलेशन मेनली दैट इज रिक्वायर ईटिंग मोर देन रिक्वायर्ड और कलेक्टिंग मोर फंड देन रिक्वायर्ड. कोई कहेगा प्रभु जी मेरा जो गुजारा है वो महीने 20,000 रुपए से हो जाता है, लेकिन 20,000 में प्रभु मैं मर्सिडीज में नहीं घूम सकता, ये BMW में नहीं घूम सकता. लेकिन भाई आपका पर्पस क्या है ये देखो पहले. यार ऑपुलेंस का जो स्टैंडर्ड है उसका इम्प्रूव करने का कोई सीमा नहीं होता है. देर इज नो बॉर्डर या फेंसिंग कि भाई कहां तक हमें आगे बढ़ना है. सो व्हाट यू हैव टू थिंक, यू कैन नॉट गो आफ्टर इट. जैसे प्रॉपर एग्जांपल यूज टू एग्जांपल देते थे क्या कि अगर आप दान गेहूं की या चावल के बैग रखोगे तो पंछी आएंगे खा के चले जाएंगे, लेकिन मनुष्य को देंगे तो अत्याहार करते हैं, वो लोग सब कुछ ले लेते हैं. तो द पॉइंट हियर इज दैट जो भी हम अत्याहार करते हैं या फिर जैसे शास्त्र मैंने अत्याहार बताया शास्त्र, तो मटेरियल प्रोपेंसिटी को संतुष्ट करने के लिए जो पंडा बनना चाहता है शास्त्र पढ़ करके या फिर धर्म का पालन करता है केवल मटेरियल डिजायर को फुलफिल करने के लिए या फिर उसका जो जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति है उसको ध्यान में नहीं रख करके केवल इकट्ठा करना चाहते सब कुछ, दैट ऑल कम्स अंडर अत्याहार. धर्म को नहीं समझना प्रॉपरली दैट इज ऑल्सो अत्याहार एंड प्रयास अत्याहार, क्योंकि फिर भी वो गिर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप धर्म के नहीं समझोगे इसको तो मे बी वी कैन टॉक अबाउट गौड़िया मठ ऑल्सो. गौड़िया मठ में भी आप देखो पीपल दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द रियल विजन, वो क्या करना चाहते भक्ति सरस्वती, तो वो आध्यात्मिक जीवन में से भी गिर जाएंगे बाद में. क्या they will fight in between because they don't know the real purpose, they are collecting more things and they have philosophical misunderstanding, so that is the problem, they had philosophical misunderstanding. Bhaktisiddhanta Saraswati anuvritti mein aisa likhte hai ki atyahar mein aur kaun si kaun si cheez aati hai, dry speculation, mental speculation, ye sab atyahar mein aata hai. Phir इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के कर्मियों का जो ग्रंथ कई बार लोग पढ़ते हैं मटेरियल बुक्स, तो वो भी अत्याहार में आता है. या ज्यादा धन की इच्छा या ज्यादा मटेरियल ज्ञान को इकट्ठा करने की इच्छा, दैट ऑल्सो कम अंडर अत्याहार. फिर वो जो कॉबलर हाउस का वो है ना, वो कथा आपको याद है, ये उसके बच्चे ने वो सांप बन गया बाद में, और फिर उसके खेत में उसके बच्चे नारद ने आके बोल दिया भाई ये तुम्हारा खेत में सांप घुस गया है, तो बच्चे आके उसको खत्म कर देते. सो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एक्यूमुलेटिंग मनी दैट कम्स अंडर अत्याहार. तो दिस इज द आइडिया ईशावास्य प्रिंसिपल को याद रखना कि जितना हमारे आवश्यक है उतना लेना है, दूसरे का नहीं लेना है. मार्ग हृदय कस्य स्विद्धनम, दैट इज द आइडिया. तो भक्त जो होता है वो बैलेंस मेंटेन करता है. नोट जो होता है ऐसा नहीं कि उठाया सीधा जेब में डाला और ना ही वो नोट पड़े रहने देता उधर, बट ही यूज इट प्रॉपरली. अत्याहार इन उधर अगर खाने की बात करें तो खा सकता है, लेकिन इतना ऐसा नहीं कि टूट ही पड़ो, और ऐसा भी नहीं कि फास्टिंग ही करो खाना ही बंद, नो यूजलेस. दोनों साइड एक्सट्रीमिस्ट है, बट डिवोटी जो होता है वो बैलेंस होता है. तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. मेक सेंस? इज इट क्लियर?
यस प्रभु, थैंक यू.
तो दिस इज अत्याहार. Accumulating unnecessary or forgetting the importance of spiritual assets. तो ये चीज हमें भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम होता है. तो प्रयास, प्रयास का अर्थ क्या है? Endeavors. जो चीज प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना. कुछ लोग होता है कि कोई एक पर्टिकुलर डिग्री को प्राप्त करने के लिए लाइफ लगा देते हैं, कोई चीज को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करते हैं कि उसकी कृष्ण कॉन्शियसनेस भी डिस्टर्ब हो जाती है. कई बार हमें कहना पड़ता है छोड़ दो, अभी नहीं मिल रहा तो व्हाई यू वांट, नहीं प्रभु डिटरमिनेशन, क्या डिटरमिनेशन, भगवान ने बुद्धि दी है जिसके द्वारा वो उपयोग करके भगवान की सेवा में जुड़ सकता है। बुद्धि का उपयोग स्लॉटर हाउसेस फैक्ट्रीज और ऐसे सब चीजों के लिए उपयोग करेगा क्यों, वो ज्यादा धन चाहिए इसके लिए, तो उसका समस्या क्या होगा, एक तो पाप के कर्म में जुड़ जाएगा और उसको इंक्वायरी करने भगवान के विषय में सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए या भगवान का महिमा गाने के लिए, भक्ति के लिए वो समय नहीं मिलेगा उसको। इसलिए कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि प्रभु हमें कितना मेहनत करना चाहिए, या तो फिर ऐसा सोचेंगे एक बार मेहनत कर लेते हैं प्रभु बाद में तो यही करना है, पहले हम बहुत मेहनत करेंगे ज्यादा धन कमाएंगे फिर आप देखो मैं फुल टाइम बन जाऊंगा और फिर प्रचार करता जाऊंगा, लेकिन परिणाम क्या आता है कि इसमें बहुत बहुत नुकसान होता है हमारा। तो बहुत मेहनत करके मधुमक्खियां मध इकट्ठा करती है, यानी इसमें जो क्या बोलते उसको हिंदी में
शहद का छत्ता बोलते हैं,
शहद का
वो छत्ता बोलते हैं हिंदी अगर
छत्ता
हाँ
छत्ता ओके। तो बाद में क्या होता है उसका जो मालिक होता है फार्मर वो एकदम लास्ट में आकर सब कुछ ले जाता है, तो इतना सब मेहनत करना इट इज नॉट वर्थ। इसलिए भक्त जो होते हैं उसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, ज्ञान है प्रयास मधुपास से संबंध है, ज्यादा ज्ञान का प्रयास करके वो भगवान को समझ नहीं सकता है। इट इज बेस्ट वेज टू शरण सुन्नताम। तो प्रयास जो है उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सिंपल लिविंग। कामस्नेन्द्र प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, ये है सिंपल लिविंग। तो हमारे साथ जितना हमें आवश्यक है उतना जीना चाहिए। ये सिंपल लिविंग के प्रति हमारा आकर्षण कब बढ़ेगा, जब हम इस संसार की को समझ को कभी बोलेगी बोले आपको इतना ऑपुलेंट लाइफ जीने को मिल जाएगा लेकिन बस कल सुबह आपको खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर आप आपको बोला जाए कि आपको हम ये लिम्बोर्गिनी क्या बोलते हैं गाड़ी उसमें आपको देते रहने के लिए, उसमें आप जा सकते हो या ऑडी में जा सकते हो, लेकिन ये ऑडी में आप जाओ आगे जाकर के हाईवे पर आपका एक्सीडेंट होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू गिव अप द बॉडी, देन यू हैव एनी मोर इंटरेस्टेड इन दैट सेम कार, आपको फिर उसमें कोई रुचि रहेगी, बोले आपको बीएमडब्ल्यू में बिठाया इस उद्देश्य से कि आप रॉयल कार में बैठ करके जाओ लिमोसिन में, लेकिन दैट इज जस्ट फॉर टू आवर्स, आगे जाकर आपका एक्सीडेंट होगा एंड यू आर आउट टोटली ऑफ वे। तो वेन आप इस शास्त्र भक्तों का संग करते हो तो इसकी नश्वरता को समझते हो एंड देन यू आर कंफर्टेबल विद द सिंपल लिविंग, कि भाई उद्देश्य जीवन का ये नहीं है जितना खाना उतना यू नो रिक्वायर है उतना खाओ, जितना रिक्वायरमेंट उतना कमाओ, और उद्देश्य हमारा है भगवान की सेवा या प्रचार को बढ़ाना तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। सो ऑटोमेटिकली योर प्रयास आर डाइवर्टेड और रेगुलेटेड। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र में पढ़ते हो कि दूध पीने से भी कोई व्यक्ति अपनी सारी इकोनॉमिक नीड्स को अगर उसके पास गाय है थोड़ी जमीन है दैट्स इट, उसको खाने के लिए अन्न पीने के लिए दूध मिल गया तो उसका सारा इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट यहीं पर खत्म हो जाती है। दूर दूर जाकर के दो दो घंटा नौकरी कर यू नो ट्रैवलिंग करके आठ दस घंटा नौकरी करना, इससे अच्छा कि वही कहीं शास्त्र पढ़ सकता है। तो सो मेनी प्रयास, कर्म का प्रयास अधिक इंद्रिय भोग करने के लिए, ज्ञानी का प्रयास कोई भौतिक कारण को समझने के लिए, उसका उसमें अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, योगी का प्रयास सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, ये सारे प्रयास वास्तव में बाधा के रूप में प्रकट हो सकते हैं। वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम प्रयास। प्रजल्प अत्यार प्रयास प्रयास।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव अ डाउट। ये जो आपने सिंपल लिविंग की बात की उसके रिलेटेड है, जैसे कि वी आवर सेल्फ से हम सिंपल लिविंग जी रहे हैं, लेकिन मे बी समटाइम्स इफ यू आर गोइंग आउट टू अ पर्टिकुलर फैमिली या बेस्ड ऑन रिलेशन या सोसाइटी फंक्शन या होता है, एंड एट दैट टाइम ऑल्दो यू आर नॉट इंटेंडेड यू हैव टू कम टू देयर लेवल, या नॉट देयर लेवल इन द सेंस यू आर नॉट व्हाट यू आर
सोशल जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं उसको करना पड़ता है। जैसे हाँ, आप धनवान व्यक्ति के पार्टी पर जाते
हैं, पर आपकी स्वयं की इच्छा नहीं होती है, यू योरसेल्फ फील कि ये आर्टिफिशियल ही है।
देखिए इसमें हमें अकेले ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में इतना आगे बढ़ा हुआ है कि इज नो मोर इंटरेस्टेड टू एसोसिएट विद एनी सोशल पीपल, तो वो व्यक्ति फिर इससे सब चीजों को पार्टिसिपेट ना करे, तो एक वो अपने उसके लेवल पे होता है। लेकिन कोई व्यक्ति है कि जो सोशल लाइफ में प्रीसिंग अपॉर्चुनिटीज को भी ढूंढता है और वहां पर उसको अधिक से अधिक लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए कभी कभी उन लोग का धन का उपयोग करवाते हैं भगवान की सेवा में, ग्रंथों का वितरण करवाते हैं। सो लाइक दिस प्रीसिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए ही हैज टू मेंटेन सर्टेन रिलेशनशिप, तो उसके यहाँ पर अगर कभी जाना भी पड़े तो दैट्स फाइन। उसके से प्रभुपाद यूज्ड टू से, प्रभुपाद ने कहा कि अगर बख्शीसदास सरस्वती महाराज, अगर मुझे आवश्यक प्रचार के लिए मुझे लिमोसिन में बैठना पड़े या रोल्स रॉयस में बैठना पड़े, आई हैव नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद ने कहा कि ये बड़े बड़े मंदिर जो है ऑपुलेंट मंदिर, ये मेरे लिए, मुझे तो आवश्यकता नहीं, मेरे लिए तो वही एक कुटिया में ही मेरा तो काम हो जाता है, लेकिन अगर मैं कुटिया बनूंगा तो कोई मेरे पास आएगा नहीं, इसलिए मुझे इतने बड़े ऑपुलेंट मंदिर बनाने पड़े ताकि लोग आ सके। तो फॉर प्रीचिंग पर्पस यू आर एक्सेप्टिंग सर्टेन मटेरियल ऑपुलेंसेस, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जस्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट फॉर कृष्ण सर्विस, इफ यू आर डूइंग इट देन यू नो, जैसे रघुनाथ दास का एग्जाम्पल है, he had a lot of wonderful appearances, aisa kisi ke paas nahi ho sakta, but that was not required for him, unke liye koi aavashyakta nahi thi iski. So in the other words, bhakti jo hota hai wo yukta vairagya follow karta hai, nirbandh krishna sambandh yukta vairagya. Yukta vairagya means jo cheez krishna ke seva mein jud sakta hai usko accept karenge, chahe fir wo opulent mahal hi kyun na ho, he can accept it for krishna service. But he will not accept anything for his personal. इसके लिए वो खुद के लिए नहीं लेगा. So that is intention नहीं होना और फिर वापस वहाँ पर जाना. So the idea is that to preach. If not, then like Srivas Thakur, nothing to go anywhere. Just depend on Krishna. But that level is required to have. ठीक है?
नहीं तो detached हो जाएंगे. Society से detached हो जाएंगे.
Yeah, but they, for the higher purpose.
For the higher purpose, obviously.
Yes. Okay. Yes, question.
तो ये सिंपल लिविंग का जो आपने बताया, उसमें अभी परिस्थिति ऐसी मतलब हो गई है कि इच्छा सिंपल लिविंग की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि हमको प्रयास तो अधिक ही करना पड़ता है, इवन दो हमारी इच्छा शायद धीरे धीरे सिंपल लिविंग की हो, तो उसमें क्या हम ऐसा अपने आप को मतलब मेजरमेंट या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इफ मैं अगर श्रवणम कीर्तनम प्रॉपरली कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे जो भी साधना भक्ति अगर मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, और उसके बाद अगर फिर मुझे अधिक प्रयास भी करना पड़ रहा है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मतलब उससे बाहर तो आना ही है, बट फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि एकदम से उसमें जम्प करना वो
ऑफकोर्स नॉट। तो जनरली भक्त को प्रैक्टिकली गुरु साधु शास्त्र से गाइडेंस लेकर के सीखना चाहिए कि कितना उसको रिनाउंस होना है और कितना उसको रिनाउंस नहीं होना है। अगर कोई ये सोचे कि ये सब तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या फिर ये सब तो मेरे बाधा है बड़ा, प्रभु मैंने अभी भी शास्त्र में पढ़ा था कि ये तो बाधा है हमारे लाइफ में, but that it will not work that. तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पहले फुलफिल किया जाए, फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए। जैसे सोलह माला इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, एंड प्रभुपाद के ग्रंथों को रेगुलर पढ़ना, जैसे समझो आधा घंटा एक घंटा जैसे रेगुलर पढ़ना, जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट। चार नियम का पालन करना जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट, प्रसादम खाना मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसको पहले ट्यून टू करना पड़ेगा, इसको वी हैव टू ट्यून इट, इसको रेगुलर नेचुरल स्वाभाविक बनाना है इसको। उसके बाद क्या होगा, आप 16 से 20 माला तक पहुंचे, थोड़ा ज्यादा आपने किया, एंगेजिंग इन मोर सर्विसेज, अधिक सेवा किया, प्रचार की सेवा में जुड़ते गए अधिक समय, बिकॉज ऑलवेज ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा समय होता ही है कि जो हम वेस्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं समय को, तो दैट वो को एक धीरे 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 उसको स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए, तब जाके आपका बचेगा केवल वर्किंग आवर्स जिसके लिए आप धन कमाते हो। उसके बाद फिर आपकी क्वालिफिकेशन, आपका उत्साह, ये सब भगवान देखेंगे और फिर आपको इसके अनुसार सुविधा देते जाते हैं। सम पीपल आर गिव मोर मनी, इसको ज्यादा धन दिया जाता है कि यू वर्क लेस एंड सर्व मोर, सो तुम्हारा काम मैं कर लूंगा, कृष्ण इज डूइंग लाइक दिस। तो वी हैव टू ग्रेजुअली वी हैव टू प्रोग्रेस इन दिस,
राइट? ओके, यस
सर। प्रजल्प का अर्थ होता है अननेसेसरी टॉकिंग, बोलना चप्पल 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 बोलते रहना प्रजल्प। जैसे आप सुबह देखते हो कई बार चैंटिंग के टाइम पे क्लाइंट ढूंढते रहते हैं, कोई कस्टमर मिल जाए चैंटिंग के टाइम वो देखते रहता है, कोई मिल जाए अरे वाह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक हमारे जैसा आदमी, वहां पर जाकर के आसन जमा दिया, हाँ बता बोला आज की ताजा खबर क्या है, तो वो भी बताए कह रहे अरे छोड़ो ये लाइक दिस नॉन कृष्ण टॉक, प्रजल्प अननेसेसरी टॉकिंग, ड्रैव रहा हूं। तो इसमें शक्ति भी चली जाती है, समय भी चला जाता है और मन भी चला जाता है, तो ये सब चीज नष्ट हो जाती है प्रजल्प करने से। तो केवल कृष्ण के विषय में ही चर्चा करना, नथिंग मोर नथिंग एल्स, और किसी विषय में चर्चा नहीं करना, दैट इज वी कैन कंट्रोल प्रजल्प, जो कृष्ण के संबंधित हो, कृष्ण से सेवा से संबंधित हो, ये सब चीजों की चर्चा करना। जैसे मीडिया है वो प्रजल्प में आ सकता है, जैसे गॉडलेस न्यूज लाइन जो होती है डेट कम्स अंडर प्रजल्प, चैटिंग ऑन सोशल मीडिया और यू नो इट ऑल कम्स अंडर टीवी चैनल्स, यू नो बिग बिग कॉन्फ्रेंसेस, you know these are all comes under prajalpa bhakt, ye bhai aur bhakton ke beech mein bhi aisa dekha jata hai, bhakt kisi ka backbiting karna ya fir you know non krishna conscious discussion karna, to is tarah se dheere dheere dheere, jaise for example I mean there are many ways prajalpa can be, jaise aapka answer hai थोड़ा, लेकिन एक्सटेंड इट, सो दैट कम्स अंडर प्रजल्प ओनली, अननेसेसरी व्हाई यू टॉकिंग, अननेसेसरी टॉकिंग दैट इज प्रजल्प। तो जैसे कभी कभी लेक्चर में भी हम देखते हैं सो मेनी थिंग्स, बट यू डोंट नीड टू से ऑल दिस थिंग्स, सो लाइक दिस We have to change ourselves. Actually, ये चीज हम इसको जितना डिटेल में डिस्कस करें उतना अधिक ये आगे बढ़ सकता है, बट हमें हर एक चीज का एक नियम बनाना चाहिए कि मैं इतना समय इसके लिए दे सकता हूँ, इतना समय इसके लिए दे सकता हूँ, इतना समय, so we have to schedule our things and then only we can धीरे 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 हम अपने आप को इसमें स्थिर कर पाते हैं। Prajalpa is very, very extended things. So these all comes under Prajalpa. Only talk about, do about, talk about everything which is under Krishna consciousness एंड एज पर रिक्वायरमेंट, नॉट मोर देन दैट, उससे अधिक नहीं. सो दैट ऑल कम्स अंडर. अगर आप प्रभुपाद के ग्रंथों के बाहर जाते हो और कुछ भी बोलते हो, देयर ऑल कम यू नो प्रजल्पा. देयर आर सो मेनी सच माइक्रो थिंग्स विच कम अंडर प्रजल्पा, बट दैट वी कैन डिस्कस लेटर ऑन और मे बी सम अदर टाइम, बिकॉज वी कैन नॉट गो टू डिटेल इन दिस. बट द आइडिया इज दैट that anything which is beyond, which is not necessary and which is not related to Krishna, that is so prajalpa. Prajalpa mein kya hota hai, bada maja aaya prabhu ji, bada acha laga, but that is not the bada maja aaya, there is nothing about maja, this is about how I can improve my Krishna consciousness. So kuch log hote hai jaisa humne dekha hai kahi jagah ki दो घंटे का सत्संग और एक घंटे का अनाउंस टाइम होता है सत्संग कार्यक्रम का, ये अनाउंस टाइम एक घंटे का है, लेकिन जनरली वो सत्संग कार्यक्रम चलता है दो घंटा, और दो घंटे में से पहला जो घंटा होता है उसमें कीर्तन और लेक्चर होता है, और बाकी का एक घंटा जो होता है वो सोशल टॉक्स होती है, तो जिसमें कृष्ण के विषय में कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है. आई मीन देयर इज नथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा. ऑफकोर्स इफ कनेक्टेड टू कृष्णा देन नो प्रॉब्लम, इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्ण, अगर कृष्ण से संबंधित नहीं है तो देट कम्स अंडर प्रजल्पा, और हमें लगता है कि हम साधु संघ कर रहे हैं. दिस इज नॉट साधु संघ, वी आर डूइंग प्रजल्पा, यूजलेस टॉप्स. सो इसलिए बेस्ट टॉप्स इज दैट एसोसिएट विद दोज हु आर स्पिरिचुअली एडवांस देन अस एंड दे विल टॉक अबाउट कृष्ण. तो आध्यात्मिक विषय अधिक हमें ग्रहण हो, ये उद्देश्य से जो किया जाता है कार्य, दैट कम्स अंडर right way of using it. Prajal, otherwise it comes under prajalpa. So gossiping, debates, or kya sakte iska andar? Useless arguments, fault finding, phir galat bolna, falsehood, nakli, blaspheming, ninda, worldly talk, भगवान के भगवान जो जिसमें नहीं है, ये सब दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रजल्पा. सो द सॉल्यूशन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, टॉक अबाउट कृष्णा. द नियम आग्रह, यू एनी टॉक एनी क्वेश्चन ऑन दिस?
हरे कृष्ण, पता नहीं कहीं सुना था या पढ़ा था, इसमें कुछ ऐसा था कि कोई प्रजल्पा करने आता है तो उसको वहीं रोक देना चाहिए, एंड यू शुड आस्क yourself ki whether the person who is asking who has come to talk to you is it of your use or not, or fir dusra how can you be helpful to that person, and tisra I don't know whether it is related to Krishna or not. Agar ye teenon mein se kuch bhi nahi hai then you should stop the person there itself, to prajalpa ka sawal nahi hota hai.
Yes, but there are many places that devotees are very weak to say no, isliye we must learn how to say a sweet no. प्रजल्पा करने को आता है तो हम जरूर नहीं है कि भाई हम गार्बेज बॉक्स से तुम आओ, जितना गार्बेज डालना डालते जाओ हमारे ऊपर, वी आर नॉट द गार्बेज बॉक्स. तो अगर कोई व्यक्ति आता है प्रजल्पा करने के लिए, वी हैव टू बी केयरफुल. लेकिन आप देखना है, दिस माय एक्सपीरियंस, अगर आप प्रजल्पा नहीं करते है ना तो दूसरी बार ऐसे लोग आपके पास आते ही नहीं है. वो देखते कि ये इंटरेस्ट नहीं दिखाता है इसके अंदर, तो इट इज वेरी इजी. अब थोड़ी देर में तो आपको सब लोग पहचान जाएंगे, बट ही इज नॉट अ प्रजल्पा मैन. Excuse me. So, niyamagraha. Prajalpo niyamagraha. Sorry. नियम आग्रह का अर्थ होता है नियम की महत्व को समझ के समझे बिना नियम का पालन कर रहा है। नियम का जो महत्व समझते है बिना ही नियम का पालन कर रहा। जैसे कि आग्रह का अर्थ होता है उसके प्रति कोई लगाव नहीं होना, जैसे नियम आग्रह। ठीक है, अभी नियम तो बनते ही टूटने के लिए बनते हैं, पर ये सब नियम हमारे लिए थोड़ी होता है। रूल्स आर फॉर फूल्स, जो नियम होते हैं वो तो मूर्खों के लिए होते हैं। तो नियम का आग्रह, आग्रह का अर्थ होता है कि उसको पालन करने के प्रति सावधान नहीं रहना, दैट इज नियम आग्रह। वो एक्सट्रीम, दैट इज ऑल्सो अंडर नियम आग्रह। और दूसरा आग्रह, दूसरा अर्थ है आग्रह का, क्या अर्थ होता है कि नियम की महिमा को समझे बिना उसको कस के पकड़ के रखना और उसका परिणाम भक्ति में नुकसान के रूप में आता है। तो दैट इज नियम आग्रह। वी हैव टू एक्सेप्ट इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कुछ नियमों का पालन करना केवल अल्टीरियर मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए या फिर इमीडिएट बेनिफिट के लिए, तो वो नियम नियम आग्रह के रूप में आ सकता है। वो दैट एक जवान व्यक्ति, भक्तिवान सरस्वती माँ एक एग्जांपल देते थे, एक जवान व्यक्ति एक मैरिज फंक्शन में गया था, उसने अटेंड किया। तो उसने क्या, उसने देखा कि एक बिल्ली वहां पर बहुत परेशान करती थी सबको। तो लोग वहां के कुछ लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उस बिल्ली को पकड़ लिया और उसको एक बास्केट के अंदर बंद कर दिया। एंड वो जवान व्यक्ति मैरिज, जो मैरिज करने वाला था, मैरिज होने वाला था, उसने ये सब कुछ देखा और उसने देखा कि कैट को भी देखा और बास्केट को भी देखा। तो उसने इसको ऐसा मान लिया कि ये नियम है, उसको उसको लगा कि ये एक रिचुअल है, ये एक नियम है, ये एक बिल्ली उधर होनी चाहिए हमेशा और उसको एक बास्केट के अंदर रखना पड़ता है और तब जाके शादी होती है। तो ये अंडरस्टूड लाइक दिस, दिस इज नियम। But no, you don't know the purpose of that, and then you made it. So the purpose हमें समझना चाहिए कि हम जो भी नियम कर पालन करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। Without understanding, you don't follow that. So that one must understand. और दूसरा example नियम आग्रह का है। नियम आग्रह का अर्थ क्या होता है कि शास्त्र के विधि विधान का ठीक से पालन नहीं करना, reject करना। इतने सारे नियम प्रभु जी कौन पालन करेगा, शास्त्र तो कितने साल पुराने हैं, उस समय ये सब नियमों का पालन करना ठीक था, आज के समय थोड़ी ये सब नियम पालन होगा, हमसे तो ये सब नहीं होगा, हम तो ऐसे ही है प्रभु, देखो हम तो साफ साफ बोलने वाले लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं, इसलिए हम तो ये हमसे नियम पालन नहीं होगा, आपको भक्ति देना है तो दो नहीं तो नहीं। लाइक दिस नियम आग्रह, जो कभी प्रसाद के कहाँ पर गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, तो किसी के घर पे गए तो खा लिया, एक बार खाया थोड़ी खाया, प्रसाद नहीं था लेकिन वो भोग लगा हुआ था, तो कोई बात नहीं, वो तो समझ लेंगे, थोड़ा ही तो गए ना, हमें रोज थोड़ी करते हैं ऐसा। तो ये आग्रह नियम का पालन नहीं करना। जैसे कोई बोलता है बोले एक दिन चाय पी लिया तो क्या प्रॉब्लम है, एक दिन अगर आपने प्याज लहसुन खा लिया, प्रभु गलती से खाया था ना, जानबूझ के थोड़ी खाया था, तो दिस इज नॉट हैविंग अ मूड टू फॉलो इट, उसको फॉलो नहीं करने का इच्छा या उसके प्रति आकर्षण नहीं। तो नियम को पालन प्रॉपरली करना चाहिए भक्तों की संगति के साथ रह करके, एंड देन अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई ये क्यों उसको फॉलो करें, देन दिस इज प्रॉपर नियम। अदरवाइज वो आग्रह बन सकता है और आग्रह बार प्रॉपर लेक्चर दे रहे थे और माइक जो था वो थोड़ा हो गया, तो उसके बाद के लिए प्रॉपर प्रचार कर रहे थे और लेक्चर में रुकावट आ रही थी, तो प्रभुपाद ऑफ कोर्स हम ये जा रहे थे कि प्रभुपाद एग्जाम, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रभुपाद एग्जाम, बट डिड यू लिसन दैट?
हरे कृष्णा, नहीं प्रभु, मतलब योर वॉइस इज क्वीन, यू कैन रिपीट
व्हाट आई स्पोक लास्ट.
प्रभुजी, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द प्रभुपाद एग्जाम. माइक्रोफोन तक समझ में आया, आगे नहीं समझ में आया.
वो भी सुनाई. एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद लेक्चर के टाइम पे उनका माइक्रोफोन स्टैंड से लूज हो गया, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको ठीक कर, इसको बांधो. पर दोस्त उस समय उनके पास बांधने के लिए कुछ नहीं था. देन प्रभुपाद सेड दैट आपका जो ब्राह्मीन थ्रेड है ना, उससे ही इसको बांध दो, नो प्रॉब्लम. तो कोई ऑफ कोर्स प्रभुपाद कैन डू दिस, वी कैन नॉट डू दिस. प्रभुपाद ये दिखाना चाहते थे इस एग्जांपल के माध्यम से कि द पर्पस इज टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट, नॉट दैट यू नो जस्ट नियम को उसके मुख्य जो उद्देश्य है उसको समझे बिना उसको पालन करना. दिस इज वन इज नियम आग्रह, सेकेंड इज नियम आग्रह. फेथफुली शास्त्र के सिद्धांत को स्वीकार करना और कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बना करके उसी मार्ग पे आगे बढ़ना, नियम आग्रह. इन शॉर्ट, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण. हायर रूल को फुलफिल करने के लिए लेसर रूल को तोड़ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे गोविंद और चैतन्य महाप्रभु का हमने एक बार आपको कथा बताया था पूरा. तो हायर जो रूल है कि भगवान को लांग, यू नो, भगवान के चरण कमल को मसाज करना है, दैट इज हायर पर्पस. तो उसके लिए भगवान के ऊपर कपड़ा डाल के ऊपर कूद गए, तो देर वॉज अ लोअर रूल्स, लेसर रूल फॉर हायर रूल. तो इस तरह से वी शुड अंडरस्टैंड द आइडिया. गोविंद चैतन्य महाप्रभु की कथा हमने आपको बताई थी पहले, फिर रिमेम्बर कि भगवान के ऊपर कपड़ा रखकर गोविंद कूद के चला गया था.
यस प्रभु,
यस. सो दैट इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड द नियम आग्रह. सो दिस इज द नियम आग्रह. देन जनसंघस्य, जनसंघ का अर्थ होता है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उन लोग का संघ त्याग करना पड़ता है. इंटरेस्ट नहीं होता है उनको भक्ति मार्ग में. अब जैसे ही आप कृष्ण भक्ति की बात करते हो, वो लोग मौन हो जाते हैं या फिर भाग जाते हैं. जैसे आप नॉन कृष्ण कॉन्सेप्ट बात करते हो, तो दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, बड़ा मजा आता है, फुल फॉर्म में आ जाते. तो भक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये सबके अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं. वो ऐसे लोग उनकी उसी विषय में चर्चा करने का इच्छा रखते हैं. उस विषय में चर्चा करोगे तो देन हैप्पी, बट वी आर नॉट हैप्पी. तो इसलिए हमें भक्त सनेवास, तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, भक्तों का संग करना चाहिए. ओनली देन ओनली वी कैन प्रोग्रेस. जो हमारे लाइन में जुड़े हुए, जो हमारे साथ है, दे कैन ओनली अंडरस्टैंड द रियल पर्पज ऑफ अवर desire, and then those associations help us. So Prabhupada said the purpose of ISKCON, ISKCON ka purpose hai ki bhakto ko aise logo ki sangati karne ka avsar prapt ho ki jo log unko Krishna ko yaad karne mein sahayata kare, jo unko Krishna ko bhulaye nahi. To aise logo ke sath sangati karna, that is the idea behind it. Jana sangasya, जनसंघ बहुत सारे होते, ये छह प्रकार के जनसंघ लोगों का त्याग करना चाहिए. तो व्हाट इज दैट? एक तो नास्तिक या मोरालिस्ट, जो नास्तिक होता है या मोरालिस्ट होता है, नीति किया एक होता है मोरालिस्ट, दूसरा होता है नास्तिक, जो नास्तिक है. फिर तीसरा प्रकार का कैटेगरी है जो समाज सेवा करने वाला है, ऐसे लोग. फिर कुछ सो कॉल्ड थिस्ट, कुछ सो कॉल्ड आस्तिक होते हैं जो इसको इसके महत्व का समझ नहीं सकते। फिर सहजया, सहजया का अर्थ होता है कि जो कृष्ण भक्ति को सहज मान लेते। और कुछ होता है वुमनाइजर्स, ऐसा कि जो स्त्री संगी है, तो ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना। जो ऐसे जन्म संगी है, ऐसे संगति वाले के संगति भी नहीं करना, बिकॉज दे आर कंटेमिनेटेड, दे आर टॉकिंग नॉन कृष्ण कॉन्शियस। वो भगवान के विषय में बात नहीं करते और कोई उल्टा सीधा बातें करते रहते। तो भक्तिवर ठाकुर भी इसके विषय में बताते हैं कि जो लोग फॉल्ट फाइंडर्स है, क्रिटिक्स है, उन लोग की संगति नहीं करना। और मटेरियलिस्टिक है, जो लोग भौतिकवादी है, इनको परंपरा में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। दैट्स द आइडिया बिहाइंड जनसंगम। और इन शॉर्ट, जनसंगम वो लोग है कि जो लोग भक्ति के मार्ग में हमारी सहायता करने के बदले हमारे कृष्ण को भुलाने में हमारी सहायता करते हैं। सो वी हैव, दिस इज द सोसाइटी, इस्कॉन सोसाइटी का जो स्थापना हुआ है वो उसी के लिए हुआ है कि वी कैन गेट एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज एंड देन वी कैन ग्रेजुअली इंक्रीज अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। लौल्यम, दिस इज द लास्ट। लौल्यम का अर्थ होता है लोभ, तो इसमें भी भुक्ति मुक्ति सिद्धि का लोभ होता है। भुक्ति वाले लोभ क्या होता है? मटेरियल प्रोपेंसिटीज, भोग की इच्छा, उसका डिजायर, वॉट डिजायर, अनंत लौल्यम, भोग बड़ा लोभ होता है। जैसे लोभ के विषय में हमने आगे में एक बार बताया था संक्षिप्त में त्याग के साथ में। तो लोभ कैसा होता है कि कोई सीमा नहीं होती उसकी, धन कमाने की, इंद्रिय भोग करने की, या फिर ऐश्वर्य बढ़ाने की, या फिर उसका कोई सीमा नहीं है। हैज नो लिमिट, इट कैन गो ऑन एंड ऑन। बड़े बड़े टाइकून्स है, उन लोग का भी अब देखो उनका कोई सीमा नहीं है, बढ़ते ही आ रहे, बढ़ते ही आ रहे। आप उनको पूछो भाई ये सब तुम करोगे क्या इसका, उनके पास कोई आंसर नहीं है। बोले मेरी पेढ़ियां पालन करेगी। दे आर लाइक वो सांप जो नारद मुनि वाला था ना एग्जाम्पल, तो दे बिकम लाइक अ लॉलियम। सो एनीथिंग, किसी भी ऐसी वस्तु की इच्छा रखना जो लोभ के अंतर्गत आता हो, एनीथिंग कम्स अंडर लोभ। तो लोभ में बहुत सारी आती है, ग्रीड मीन्स जो तो लोभ है, फिर उसके सटल, उसका आगे का एक स्टेप डिजायर, इच्छा, और उससे भी एक आगे का स्टेप चंचल मन। तो दीज आर ऑल कम्स अंडर लौल्यम। तो मन और बुद्धि को अगर कृष्ण की शरणागति में रखते हो तो देन इट बिकम्स सेल्फ स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर जनसंग करोगे तो क्या होगा, वो लोग आपको डिजायर और ग्रीड ये दान में देते हैं जनसंग से। तो जनसंग से लौल्यम, फिर वो लौल्यम जब आता है तो आपको प्रयास करने की इच्छा होती है कि मैं और प्रयास करूंगा इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। फिर वो प्रयास जो होता है वो आपको अत्याहार तक ले जाता है, जो और मेहनत करता है, करता है, करता है, करता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड।
हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। आपने दो वर्ड्स बोले थे, एक नियम आग्रह और नियम अगह। तो नियम अगह वाला चीज तो है नहीं यहाँ पे, मतलब मेरे को दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों बुक्स में मेरे को मिल नहीं रहे।
नियम अग्रह, अग्रह आग्रह,
तो अच्छा, तो आग्रह वाला तो है कि आप है ना, मतलब बस नियम पूरा करना है। जैसे आपने वो अल्लाह वाला एग्जाम्पल दिया कि श्रील प्रभुपाद ने बोला कि वो जने उसे ही बांध दीजिए, और दूसरा कि वो बिल्ली वाला जो था उसको आग्रह बोलेंगे।
नहीं, नियम आग्रह जो है उसका अर्थ होता है कि नियम की जो
महत्ता है, नियम क्यों है, उसको समझे बिना उसका पालन करना। जैसे बिल्ली वाला एग्जाम्पल है, तो वो एक्चुअली नियम तो था ही नहीं, उससे नियम बनाया। क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि उसको पता नहीं था कि बिल्ली को क्यों बास्केट में रखा जा रहा है, वो उसको नहीं पता था। दैट वॉज द आइडिया, बट दे डोंट नो दैट व्हाट इज द रूल्स। द रूल्स आर फॉलोड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पर्पज ऑफ द रूल, दैट इज द राइट वे। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द रूल एंड यू फॉलो इट जस्ट लाइक दैट, जैसे चातुर्मास्य में, जैसे निर्जल एकादशी है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई कहता है कि एकादशी निर्जल ही करना चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा नियम है, वो मर जाऊंगा लेकिन पानी नहीं पीऊंगा, तो ये नियम आग्रह हो गया। आग्रह, आग्रह मैं फॉलो करूंगा नियम को कि निर्जल एकादशी करूंगा। अरे भाई, तो मर जाएगा, इससे अच्छा कि तू सेवा कर ले, माला का जप कर ले, स्टडी भागवत कथा पढ़, सुन, बट दैट इज इम्पोर्टेंट। नो, एकादशी निर्जला करनी है तो हम हॉस्पिटल में रहकर भी निर्जला एकादशी करूंगा। दिस इज नियम आग्रह, वो अननेसेसरी, वो स्टिकिंग टू द पॉइंट, बट देर इज नो नीड। नियम आग्रह का अर्थ होता है कि उसके प्रति उदासीन होना, नॉट इंटरेस्टेड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, और नेग्लिजेंस। जब नियम की बात आती है ना, तो फिर वो अपने, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, या उसके पालन करने के लिए सावधान नहीं होना कि भाई आप देखो प्रसाद के बने कुछ खाते नहीं हो, और यहाँ आप अभी पता नहीं, मैं कभी कभी खा लेता हूँ, याद नहीं रहता, वो इतना इतना कौन दिमाग में भर के रखेगा कि भोग लगा है कि नहीं लगा है, जो मिला वो प्रसाद है, जो खा परोसने वाला है उसकी गलती है कि वो प्रसाद नहीं लेके आया, मैं क्या करूँ। तो दिस इज नियम अग्रह। Now you understand? One is negligence and second is without understanding the purpose. They are two different things.
Prabhuji, sorry, मेरे को negligence वाला फिर से समझ नहीं आया।
Okay, so समझ लो कि कोई व्यक्ति ये मानता है कि भगवान ये सारे जो नियम बनाए गए हैं, नियमों का पालन, ये सारे नियम जो है वो हमसे जितना हो सके उतना ही हमें पालन करना चाहिए, ये उसका अपना मानना है। वास्तव में ये उसकी अपनी इच्छा है, बट दिस इज नॉट द राइट वे। शास्त्र के जो नियम है उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। जैसे भाई कोई कहता है कि भाई ऐसे जुआ खेलना नहीं चाहिए, लेकिन भाई हम तो जुआ खेल करके भगवान का सेवा ही करने वाले हैं, पैसा ज्यादा कमाऊंगा तो सेवा करूंगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तुम जुआ नहीं खेल सकते, लेकिन भाई मैं तो कृष्ण के लिए जुआ खेल रहा हूँ। यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स आर फॉर कृष्ण सर्विस। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रूल्स आर इम्पोर्टेंट टू बी फॉलोड एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द रूल, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। जैसे कोई शराब की दुकान लगा है, किसी ने यू नो एनीथिंग लाइक कोई मांस बेच रहा है या उसको पका रहा है, तो कोई सोच सकता है कि ये हमारे नीति नियमों का फॉलो करने का कोई आवश्यकता नहीं, मैं धन कैसे कमाऊंगा। देयर मेजर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल दिया खाने का एग्जांपल दिया, कोई व्यक्ति मना किया है प्याज लहसुन नहीं खाना है, फिर भी वो सोचता है कि प्याज लहसुन कभी खा लिया तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। Means not to be eager to follow the rules and regulations. भगवान के भक्ति के संबंधित जो नीति नियम है उसको फॉलो करने के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं होना।
थैंक यू, अभी समझ आ गया मुझे, थैंक यू।
ओके, तो एनीवे, सो लॉलियम नियम आग्रह लॉलियम, लॉलियम को वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लॉलियम। सो एनी डिजायर दैट इज दैट कम्स अंडर लॉलियम विच इज भुक्ति मुक्ति सिद्धि, दिस कम्स अंडर लॉलियम, जो कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने में वास्तविक लॉलियम कृष्ण भक्ति का है। अगर उसको अगर हम लॉलियम कर सकते हैं, यू नो, तो उसके प्रति हमारे लॉलियम है, तभी वो आगे हमें हेल्प करता है। अन्यथा सारे लॉलियम जो होता है वो अन्य से सदी हमारे भक्ति में बाधा डालते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसका पालन करेंगे तो हम ये लोभ से बच पाएंगे। फिर इसका लोभ का अगर हमारा वृत्ति जाएगा तो भक्त जीवात्माओं के बीच में जो एनमिटी है, जो शत्रुता है, वो चली जाएगी। फिर हम उतना ही धन लेंगे हमारे लिए जितना आवश्यक है, हमारी आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे। तो बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है इसके माध्यम से, आध्यात्मिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है अगर कोई लोभ ही नहीं है लोग तो। फिर एजुकेशन ट्रेनिंग को बढ़ाया जा सकता है। दिस आर ऑल बिकॉज इफ समबडी इज नॉट, आई मीन इफ यू डू दिस द लोभ कैन रेगुलेट। हमारी शुद्ध चेतना उजागर होती है तो ऑटोमेटिकली लोभ जो है वो नष्ट होता जाता है। तो लौल्यम एकम मूल्यम, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कृष्ण की अधिक से अधिक हमें सेवा मिले, इसके प्रति लोभ होना चाहिए। जैसे सत्वगुणी लोभ कैसा होता है, कविताएं बनाना, उसको एकत्र करना। पर रजोगुणी लोभ कैसा होता है, रजोगुणी लोभ का क्या परिणाम आता है कि बहुत सारे अचीवमेंट, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। और तमोगुणी, तमोगुण में लोभ कैसा होता है, कृष्ण भक्ति को त्याग कर देना। देयर आर मेनी वेज वी कैन टॉक अबाउट। भक्ति काम में होता है और पोस्ट पोजीशन के लिए भक्ति में जुड़ता है, पोस्ट पोजीशन को लेकर के। तो दैट इज मुक्ति काम, मुक्ति का नहीं, वो इंद्रियों से अलग अलग प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए जुड़ता है। तो देयर आर सो मेनी वेज वी कैन अंडरस्टैंड द लोभ। डोंट बिकम कॉम्प्लेक्स। कृष्ण भक्ति इजी फॉर इजी पीपल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर नॉन इजी पीपल, कॉम्प्लेक्स पीपल। तो लाइक दिस, कई बार किसी को अनुयायियों का लोभ होता है कि मेरे पास बहुत सारे ग्रुप मेंबर बड़े, मेरे सारे यू नो बहुत सारे लोग जुड़े, या फिर किसी को सीनियर बनने का लोभ होता है, लोग मुझे आदर दे, मैं सीनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते मैं सीनियर हूँ तो मैं खुद विखान करूंगा, मेरा सबको बताऊंगा कि मैं सीनियर हूँ। तो दे कीप ऑन एडवर्टाइजिंग देमसेल्फ्स, मैं सीनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ। लोग आपको भूलने नहीं देंगे, अगर आप भूल गए एक मिनट के लिए तो वो तैयार बैठे आपको याद कराने के लिए, बिकॉज दे वॉन्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। तो आदर का रिस्पेक्ट, आदर का लोभ। So there are so many different lobes are there, but these all lobes are sarvir bhakti vinashyati ke roop mein aata hai. So best kya hota hai, krishna seva ke liye laulyam ka bhakti thakur kya kehte hai, lobha bhakt sanghe hari katha, bhakton ke sang mein baith karke hari katha sunna, that is the lobha स्पिरिचुअलाइजेशन। अगर हम लोग को स्पिरिचुअलाइज करना चाहते हैं तो भक्तों के संग में बैठकर हरि कथा का चर्चा करें, देन इट बिकम्स स्पिरिचुअलाइजिंग लोभ। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस
प्रभु जी, एक डिवोटी है, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने जो दो रीजन अपनी दीक्षा नहीं लेने के लिए जो बताए वो हमारे में भी लागू पड़ता था, लेकिन हमने उसको नजरअंदाज किया कि ये कंसिडर करने लायक नहीं है और हमने दीक्षा लिया। तो वो दो रीजन ये है कि उन्होंने भी पहले नॉन इस्कोन कोई गुरु से दीक्षा लिया हुआ था, और सेकेंडली कि कल को बहू आएगी तो वो पता नहीं अपना फॉलो करेगी या नहीं करेगी, तो फिर हमें प्याज लहसुन अगर खाना पड़ा हमारी शरीर नहीं चलेगा, हम हैंडीकैप जैसे हो जाएंगे, तो फिर क्या कैसे फॉलो करेंगे। तो वो सोच के वो अभी तक दीक्षा के लिए रेडी नहीं हो रहे, लेकिन हमने हमारी दोनों चीजें हमारे में भी लागू पड़ती थी लेकिन हमने इस चीज को नहीं जाना, तो क्या वो सही है कि गलत है ये?
यस यस वो सही है, क्योंकि दीक्षा लेने के लिए ये सब पैरामीटर्स देखा नहीं जाता है, क्योंकि दीक्षा आध्यात्मिक विषय वस्तु, ये भौतिक जीवन से कोई संबंधित नहीं है। और जहां तक आपका आगे जाकर के क्या होगा, तो आगे जाकर के क्या होगा वो आप अभी तो आप खुद अपने विषय में नहीं जानते, तो दूसरों के विषय में क्या बता सकते हैं। आगे जाकर के वही होगा जो कृष्णा आपकी शरणागति को देख करके आपको देंगे। सो यू हैव टू हैव फेथ ऑन कृष्णा, आपको भगवान की शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है, देन कृष्णा विल हेल्प यू। अगर दीक्षा तभी लेना चाहिए जब आपको आगे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है, केवल दीक्षा कोई रिचुअल नहीं है कि सब ले रहे तो फिर मुझे लेना है। अगर उस हिसाब से अगर आप दीक्षा ले रहे हो तो आप उसका महत्व नहीं समझते, और फिर हो सकता है कि आप दीक्षा की विधि विधानों का पालन ना भी करो, और बाद में आप ऐसे कार्य भी करो कि जो शास्त्र से भी विपरीत हो। इसलिए कई बार शिष्य बनना एक बात होता है और दीक्षा लेना दूसरा बात होता है। तो आप हम दीक्षित हो सकते हैं लेकिन शिष्य नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए गुरु, एक बार मैं अपने गुरु जी से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि लोग भले दीक्षा ले मुझसे लेकिन शिष्य तो वही माने जाते हैं जिसको मैं शिष्य मानता हूँ। तो दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि शिष्य और गुरु का एक संबंध होता है, उसके आधार पर चलते तो शिष्य होते, बाकी तो हम केवल दीक्षित ही रहते, ज्यादा कुछ नहीं। लाइक दिस।
थैंक यू।
ओके,
हरे कृष्ण। तो प्रभु जी हमें किसे पता चलेगा कि महाराज ने हमें शिष्य माना है या नहीं माना है?
शिष्य नहीं माना ऐसा पूछने की आवश्यकता नहीं होती गुरु को। अगर आप गुरु को आदेश का पालन करते हो तो वो आपको शिष्य मानते ही है। अगर आप उनके आज्ञा का उल्लंघन कर देते हो, आप उनको बार बार आपको समझाने के बाद भी आप उनकी बात नहीं सुनते हो, तो फिर वो गुरु का अपना निजी निर्णय होता है जो आप वो आपको शिष्य मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति ये जज नहीं कर सकता कि गुरु इनको शिष्य मानते या नहीं मानते, ये तो उनकी निजी इच्छा पर आधार रहता है। और ये तो केवल उसका आंसर तो केवल गुरु ही बता सकते हैं कि वो किसी को शिष्य मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन वैष्णव गुरु जो होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, और इसलिए गुरु का एकदम सिंपल लॉजिक होता है कि जो शास्त्र कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, उस बात को सामने रखते सबके सामने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने का वो अनुरोध करते हैं। जो भक्त उनके आदेशों का पालन करता है और उनकी शिक्षाओं के आधार पर जीवन जीता है वो स्वाभाविक रूप से शिष्य है। लेकिन जो उनके आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, जो अपनी प्रतिज्ञाओं को सुनता नहीं और जो बार बार उसको कृपा करने के बाद भी वो समझता नहीं, उसके बाद फिर गुरु ये तय कर सकते कि क्या करना है आगे। इसलिए दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज बेटर नॉट टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि कोई कौन कब गुरु शिष्य को त्याग करेंगे। अरे भाई आप, हम तो शिष्य बनना चाहते हैं ना, हम शिष्य का त्याग के विषय में क्यों सुने? हम तो शिष्य बनना चाहते हैं एंड वी वांट टू इम्प्रूव अवर स्टैंडर्ड, वी आर नॉट आफ्टर यू नो कौन से गुरु ने कौन से शिष्य का त्याग किया। वी डोंट हैव टू स्टडी ऑल दैट मैटर, उसके विषय में स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। So, anything else? Any more questions? Hare Krishna.
No, Prabhuji.
Okay, so we can stop.